किसी के लिए ये बहुत कठिन है कि इस प्रकार के समय में स्वयं का भाव ये कहते हुए प्रकट करे यहाँ आज प्रातः के सौभाग्य को कि मैं यहाँ पर हूँ, कैसे सराहना करूँ और आप लोगों के मध्य परमेश्वर के वचन की सेवा करना, जिसके लिए मैं निश्चित हूँ कि आपको इसकी जानकारी है। और मैं भाई लियो और भाई जीन और आप सबको इस शानदार सुअवसर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे कि मैं पहला भजन अंत तक सुन रहा था, उस गायन में कुछ था, ये वो आराधना जिसे आप और अधिक नहीं पाते। और मेरे लिए सदा ये महान सौभाग्य रहा जब मैं यहाँ पर आया वर्ष में एक या दो बार कि आपको इन अच्छे गानों से आपको भर दूं। इस प्रातः मैं सोच रहा था जब भाई लियो ने गाने की घोषणा की कि वे पूर्व और पश्चिम से आते हैं और मेरी पत्नी के विषय में वो ये गा रही थी जब मैंने उसे छोड़ा और बिली और रिबेका को कि इस महान बेदारी को आरंभ करें, कि इसकी अगुवाई हो, बल्कि ये राष्ट्रों पर छा गई। और फिर मैं सोच रहा था जैसे कि मैं सुंदर साफ सुथरी दिखने वाली महिलाओं के झुंड को देख रहा था, मैंने मेडा को स्मरण किया, वो भी उनमें से एक है, वो एक काले सिर वाली लड़की थी और अब वो मेरे समान है। हम बूढ़े और सफेद हो रहे हैं और हमारा समय जा रहा है और अब भी इस शानदार आशा के साथ कि हम उसमें फिर एक साथ एकत्र होंगे जहां समय और ना होगा, बुढ़ापा हमें कुछ भी ना रोकेगा या हमें परेशान करेगा। मैं विश्वास नहीं करता कि मैं कोई ऐसी जगह जानता हूं जो मैंने अपने जीवन में कभी देखी हो, खास तौर से इन बहुत सारे लोगों के संग जहां बहुत सारे अच्छे मसीह लोग इस प्रेम के साथ इसे अपने बीच में कभी खत्म ना होने दें। बस ये याद रखें, मेरे पास एक छोटी सी हुआ करती थी, लोगों में एक कहावत थी, मेरी पत्नी का नाम होप था, मेरी पहली पत्नी बिली की माँ, वे तब हम तीन थे, होप, मैं खुद और बिली, वे हमें कहा करते थे आशा, विश्वास और प्रेम। और ऐसा लगता है कि एक मजबूत विश्वास, जैसा उन दिनों में विश्वास की ये वचन ही सत्य था और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की वो उसे करेगा। परंतु आप देखते हैं इस सब में सद्भावना महान है, वो प्रेम, जैसा कि इस प्रातः भाई लियो ने प्रकट किया, प्रेम, जहाँ की भाषाएं जाती रहेंगी, भविष्यवाणियाँ ये असफल हो जाएंगी, परंतु जब सद्भावना जो कि प्रेम है ये सदा बना रहेगा, समझे। प्रिय मरते हुए मेमने, तेरी बहुमूल्य वचन कभी अपनी सामर्थ्य नहीं खोएंगे जब तक परमेश्वर की छुड़ाई हुई कलीसिया बचा ली जाए और पाप ना करे। जब कभी विश्वास के द्वारा धारा को देखा, तेरे घावों से बह रहा है, छुड़ाने वाला प्रेम मेरा विषय रहा और जब तक मैं मरूं रहेगा। मैं सोचता हूं प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, और प्रेम यदि हम इसे प्रकट ना कर सकें, अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास प्रेम है, हम बस ये कह रहे हैं, परंतु जब हम इसे वास्तव में प्रकट कर सकते हैं जो हमने कहा है कि हमारे पास है, तब इसे हम अपने अंदर दर्शाते हैं। अब हम सिद्ध लोग नहीं हैं, हम गलतियां करते हैं, हम वो चीजें करते हैं जो गलत है, परंतु आप देखिए प्रेम इस सब को ढांक देता है। हम इच्छा कर रहे हैं जब हम अपनी गलतियां देखते हैं कि वापस पलट कर एक दूसरे से क्षमा मांगे। जी हाँ, ये योद्धा है जो वास्तव में पुरुष और स्त्रियां जो बहादुर हैं। कोई भी युद्ध क्षेत्र में जा सकता है जो कभी भी वहां पूरी रीति से न गया हो, परंतु जब वो गिरा तब वो उठकर फिर से यत्न करता है। एक गाना हुआ करता था जिसे युवा लड़के और युवा लड़कियां कलीसिया में गाया करती थीं। यदि मैं गिर जाऊं या यदि मैं असफल हो जाऊं, देखिए यदि मैं गिरूं या यदि मैं भूल गया ये आगे कैसे है, मैं उठूं और फिर से यत्न करूं, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं एक बार फिर कोशिश करूं, यदि मैं गिरूं, यदि मैं पाप करूं, मुझे उठने दें और फिर यत्न करूं, प्रभु मुझे क्षमा करें और मुझे एक बार और कोशिश करने दें। और बहुत सो के साथ, जैसा कि 120 लोग यहाँ पर जमा हैं, आप बंधे हैं कि बहुत सी बार चीजों को पाएं, शत्रु आपके बीच में घुस आएगा और आपके विचारों से होकर और ये वो आरंभ करेगा। जब वो ये करता है तो रुक जाएं, फिर सोचें, इस प्रातः के लिए सोचें, समयों के लिए सोचें, जब आप स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ मिलकर बैठे हैं। आप में से कुछ नलसाज, कुछ बढ़ई और कुछ ये वो आदि आदि, आप हर रोज संसार में संघर्ष करते हैं जब आप बाहर होते हैं, परंतु जब आप उन चीजों को देखते हैं और बड़ी परीक्षाएं आती हैं, तब इन छोटे पवित्र स्थानों को स्मरण रखें जहां आप एक साथ बैठे हैं, केवल उस चीज के साथ जो स्थिर रहती है। आपकी नौकरी असफल हो जाएगी इन्हीं किन्हीं दिनों में, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका जीवन यहाँ पृथ्वी पर असफल हो जाएगा, परंतु तब ये असफल नहीं होगा। और यदि वो हर चीज का केंद्र है तो हम आपके विचारों को उस केंद्र बिंदु पर रखें जिसने हमें इस पर खींचा है। ओह ये भला है, स्वच्छ दिखने वाला लोगों का झुंड। मेरा आपके वस्त्रों से अर्थ नहीं, निसंदेह आपके कपड़े साफ हैं और आपके चेहरे। मैं सोचता हूँ यहाँ पर ये महिलाएं, उन पर लिपस्टिक का एक भी निशान नहीं, वे सब लंबे बालों के साथ, युवा और बूढ़ी, अधेड़ और सबको देखा। भाई आप इसका अनुभव नहीं करते कि आपके पास क्या धन है। देखिए छोटी सी चैपल की आराधना में मैं भाई और बहन शंस को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इस सौभाग्य के लिए कि उनके घर में होने के लिए, और ये अब उनका घर है कि उन्होंने अपनी संपत्ति, मैं सोचता हूँ कनाडा में बेच दी है और यहाँ हमारे साथ टिकने के लिए आ गए। हमारे पास पृथ्वी का और कुछ नहीं है, हम एक आने वाले नगर की तलाश में हैं जिसका रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। और मैं भाई लियो और जीन को उनकी सच्चाई के लिए धन्यवाद देता हूँ, जो उस दर्शन के लिए जो उन्हें मिला जब हम पहली बार मिले। कोई संदेह नहीं सिवाय उसके जो उन्होंने आपको कई बार बताया। ये विचित्र है, मैंने इसे इस प्रकार नहीं देखा। मैं जान गया वहाँ आगे कुछ था। जब युवा पुरुष मेरे पास आया जैसे एक उस सपने के साथ पैरामिड का था, इस पैरामिड में खड़ा था और वो वहाँ चढ़ गया जहाँ पर मैं था, और मैं वहाँ एक प्लेट में खड़ा हुआ था, एक प्लेट या कुछ ऐसा या एक उजियाला जैसा। मैंने कहा भाई ब्रैनम आप वहाँ कैसे पहुँचे? मैंने कहा भाई लियो परमेश्वर को एक व्यक्ति को इस स्थिति में यहाँ रखना था। मैंने कहा जब जो आपने देखा अब घूम कर लोगों के पास जाओ और उन्हें बताओ कि आप विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर का है। तब ये जानते हुए जब मेरा एक स्थान है, मैं लड़कों से प्रेम करता हूँ, मैं उन्हें इस स्थिति में रखना चाहता था जहाँ मैं उनके साथ हो सकूँ, और उन्हें टेप बनाने आरंभ कर दिए। परंतु आप देखिए जहाँ तक मैं स्वयं में, वे अभी टेप बना रहे हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, परंतु परमेश्वर ने उनके लिए क्या ही महान चीज की है इन टेपों को बनाना छोड़कर। देखिए अधिकांश कोई भी टेप बना सकता है, ये समझदारी है कि टेप चला दें या चालू करें, परंतु ये पवित्र आत्मा की अगुवाई लेना है कि छोटे झुंड की इस प्रकार अगुवाई करें इस प्रातः और उन्हें एकता के क्रम में रखें और अब भी संदेश के साथ बने हुए हैं। परमेश्वर होने पाए आप इसे इन लोगों को इस पृथ्वी पर खुशी और आनंद के साथ पृथ्वी पर लंबा जीवन दें और फिर प्रभु के आनंद में प्रवेश करें अपने मार्ग के अंत में। अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं, तुरही बजने को है, भजन गाए जा चुके, अब वचन आता है। मैं सोचता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जो कि आप जानते हैं, जी हाँ आप संभवतः जानते हैं, परंतु इन युवा सिपाहियों पर ये टिप्पणी सुनते हुए, और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और आसपास सुन रहा हूँ, और आपका विश्वास और भरोसा, और आपने अपना विश्वास जो इस संदेश में रखा है जो कि मुझे परमेश्वर से मिला है। अब यदि आप इस सब के लिए नहीं था तो ये संदेश भला नहीं करता। देखिए, ये किसी को इसका विश्वास करना ही है, और जब तक ये परमेश्वर की ओर से आ रहा है तो कोई इसका विश्वास करने जा रहा है, आप समझे। परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया है, उसने अपनी महान व्यवस्था इसी प्रकार स्थिर की है कि जब वो कुछ भेजता है तो कुछ होता है जो उसके साथ मेल खाता है, गहराई गहराई को उत्तर देती है। इसे इसी प्रकार होना है। मुझे ये शब्द अच्छा लगता है जो भाई जी ने आज प्रातः प्रार्थना में विशेषकर प्रयोग किया अपने शानदार आंगन में। जब मैं उस पुल को पार करता हूँ मैं वैसा ही महसूस करता हूँ, वहाँ आता हूँ जहाँ परमेश्वर आदरणीय और आदरपूर्ण है, और इसे वैसे ही रखता हूँ। कोई मतलब नहीं जब शत्रु आता है, ये याद रखें, इसे ना भूलें, विशेषकर भाई लियो और जीन को। अब आप सोचते हैं कि शैतान इसे बिना किसी रुकावट के यूं ही चलने देगा? ओ नहीं नहीं, निश्चय नहीं, वो इन्हीं किन्हीं दिनों में चक्रवात के समान उड़ जाने वाला है। परंतु जब जब शत्रु बाढ़ के समान आता है तो परमेश्वर का आत्मा उसके विरोध में मानदंड को ऊंचा कर देता है। बस स्वयं को परमेश्वर के समक्ष अपने आप को ऊंचा उठाते रहें, एक दूसरे से मिले रहें, परमेश्वर को पकड़े रहें, क्योंकि यदि आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो ये दिखाता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये बात सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो जब आप एक दूसरे से प्रेम करें। और मैंने थोड़ी देर पहले सोचा कितने सुंदर गीत हैं, कितनी अच्छी आवाजें हैं, पुरुषों स्त्रियों पति पत्नियों युवा बूढ़े और अधेड़ों का कितना अच्छा झुंड है यहाँ एक साथ बैठे हैं। मैंने सोचा भाई इन्हें तो प्रेस कोर्ट में होना चाहिए, इन्हें वहाँ होना चाहिए और एक रेडियो प्रसारण होना चाहिए इस प्रकार से। तब आप देखिए ये बिल्कुल वैसा नहीं होगा जो परमेश्वर ने इन युवाओं को करने के लिए बुलाया है, समझे। दुल्हन बाहर बुलाई जा रही है, देखिए बुलाई गई है। अब मेरा यहाँ कार्य है कि बुलाऊं, और फिर इस प्रकार की बातें जहाँ आप लोग स्वयं को एक दूसरे के साथ झुंड में बना लेते हैं और स्वयं को थामते हैं, जहाँ आप अपने बच्चों को लाना चाहते हैं, प्रत्येक एक दूसरे को हर दिन देखता है जैसे उकाब की आंखें अपने बालकों को देखती हैं, ताकि आप ना हो। यदि आप कुछ चीज गलत देखते हैं तो आप व्यक्ति को एक और बुलाकर और उस पर प्रार्थना करते हैं और इस प्रकार की चीजें इसे शुद्ध पवित्र रखते हैं ताकि पवित्र आत्मा स्थान पर आ सके। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आराधना करें और जब आप उसकी आराधना करते हैं ये ठीक वैसे ही गाना गाना नहीं जैसे हम गाते हैं परंतु इसे आराधना की आत्मा में गाएं तब आप अनुभव करेंगे कि पवित्र आत्मा वापस आता है। और मैं यहाँ बड़े युवा पुरुष को देखता हूँ उस दिन के लिए सोचता हूँ कि नौजवानों का झुंड जो यहाँ बैठा है बड़ा कठोर पुरुष यहाँ पर बैठा है और छोटे बालकों के समान रोता है। क्यों आज देखिए वे बाहर वहाँ सड़क पर हैं संसार के व्यभिचार और गंदगी में जीवन बिता रहे हैं और आदि आदि और सोचकर कि आप अलग होकर आ सकते हैं और इस प्रकार जमा होते हैं जैसे कि भजन संहिता लिखने वाला कहता है। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम अभिषेक के तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया जो कि वो अभिषेक का तेल जिसे कि आप जानते हैं कि अभिषेक के तेल ने क्या किया इसने इसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए सुरक्षित कर दिया। देखिए उसे तेल से अभिषेक होना ही था इसके पहले कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। और जब भाई लोग एक साथ एकता में रह सकते हैं ये उस तेल के समान है तब हम प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। भाइयों के उस अभिषेक में एक साथ एकता में तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। अब हम थोड़ी सी प्रार्थना कर सकते हैं कि इसके पहले हम वचन के अध्ययन में चलें। स्वर्गीय पिता जैसे हमारे भाई ने इस प्रातः प्रकट किया है प्रभु के भव्य आंगन में प्रवेश करते हुए अब पिता हम यहाँ लोगों के इस झुंड में ये अनुभव करते हुए और अब मैं क्या कहता हूँ मुझे इसके लिए न्याय में उत्तर देना होगा और ये आपके बालक हैं पिता इन्हें निरंतर आशीष देते रहें। भाई लियो और भाई जीन को आशीष दें होने पाए ये लोग अगुवाई के लिए पवित्र आत्मा से निर्देशित किए जाएं जैसा कि हम सूर्य अस्त पर इस स्थान को तीर्थ स्थान बनाते हैं और फिर परमेश्वर के पवित्र आत्मा पुत्र तक हमारी अगुवाई करे प्रभु इसे प्रदान करें हमारे लिए वचन में होते हुए जीवन की रोटी तोड़ें। और अब हम अनुभव कर रहे हैं कि हम युद्ध में हैं हमने हथियार ले लिए हैं इन सिपाहियों के लिए जिससे कि वे इन जीवन की बची हुई घड़ियों में लड़ें। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हर एक को उसके सही स्थान पर जहां के लिए वो है रखेगा जहां से वे शत्रु कहीं से भी उसके विरोध में आए वे आड़ ले सकते हैं इसे प्रदान करें प्रभु हम ये यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। अब बल्कि मैं धीरे धीरे बोलता हूँ क्योंकि मैं प्रशिक्षण प्राप्त सेवक नहीं हूँ। मैं जानता हूँ यहाँ लोग हैं जो होशियार बुद्धिमान कुशाग्र बुद्धि के हैं सब कुछ एक और रख कर यहाँ आए हैं कि स्वयं को तोड़ दें व मानवता में नम्र हों। महान पौलुस प्रेरित मैं उसके वचनों को सोचता हूँ जब उसने ये कहा मैं तुम्हारे पास मनुष्य के लुभावने शब्दों के साथ नहीं आया क्योंकि तुम अपना विश्वास उसमें रखते परंतु मैं तुम्हारे पास आत्मा के सामर्थ्य में आया। देखिए महान बातें जो वो जानता था उसने एक और रख दी और इस प्रातः मैं अनुभव करता हूँ ऐसा मनुष्य यहाँ पर है जैसे भाई हगी और बहन कार्य क्षेत्र में शिक्षक यहाँ है और आप में से बहुत सारे लोग जो वास्तव में बुद्धिमान और होशियार हैं मैं यहाँ खड़े होकर स्वयं को छोटा अनुभव करता हूँ आपके सामने अधिक शिक्षा के साथ नहीं हूँ परंतु मैं और फिर आप लोगों को देखते हुए इस प्रकार से स्वयं को नम्र करेंगे और उन बातों को एक और करके उस व्यक्ति की सुने जो कहे गए कठिनता से जानते हों और जो लोगों को महान बनाते हैं इसलिए नहीं कि वे अपने कंधे बाहर करते हैं और चले जाते हैं ये वो जो स्वयं को नम्र करता है। मैं सोचता हूँ चरित्र जिसके द्वारा मनुष्य नापा जाता है उसके हाथ की मांसपेशियों के द्वारा नहीं या उसके हाथों के डॉलों के द्वारा परंतु वे थैले से उभार जो उसकी पैंट में जब उसने प्रार्थना की मैं सोचता हूँ यही जो पुरुष को बनाता है। अब इस प्रातः में बाइबल में से कुछ पढ़ना चाहता हूँ और मुझे वचन पसंद है क्या आपको नहीं। अब हमने प्रभु की आराधना की है और हम उसकी आराधना निरंतर करेंगे आइए उसकी आराधना करें जैसे तेज दोधारी तलवार काटने वाली जैसे ये हम में से होकर निकलती है तो ये पाए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। और मैं ये कहता हूँ कि मैं अनुभव करता हूँ कि ये स्थान है जहाँ मैं चीजों को सिखा सकता हूँ जो इस प्रातः में कहना चाहता हूँ और फिर भाई लियो और जीन वे इस पर अभ्यास करें जब हम चले जाते हैं और उन बातों को निकाल कर लाते हैं जैसे कि मैंने आज प्रातः उसके संदेश में इसका उल्लेख सुना जो वो पकड़ते हैं परंतु आप इसे मंच पर से इस प्रकार नहीं बोल सकते या उन टेपों पर परंतु देखिए केवल बैठकर और उसका अध्ययन करें और उनका अध्ययन करते रहें ये समझना कठिन है। बहुत से लोग इसे गलत समझते हैं और छोटे झुंड, क्या आप समझ में मनुष्यों में इस प्रकार नहीं है? ये सदा से ऐसे ही रहा है। यदि वे हमारे प्रभु और बचाने वाले यीशु मसीह को नहीं समझ सके, देखिए यहाँ तक कि उसके चेले भी, तो फिर हम इस दिन में कैसे आशा कर सकते हैं कि इसे समझें? आप समझे? उसने कहा वो सीधी सीधी बातें कह सकता था। आप समझे? वो उन्हें इसकी व्याख्या नहीं देगा, बस वो उनसे कहेगा। उदाहरण के लिए कहें, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं। अब क्या यदि डॉक्टर पास में खड़ा हो या नर्स या कुछ, उस दिन उस भक्त मंडली में वो बात कर रहा था, उन्होंने कहा ये मनुष्य नर पिशाच और चाहता है कि उसका लहू पिया जाए। देखिए, उसने इसे कभी भी स्पष्ट नहीं किया, बस उसने ये कहा। परंतु बाद में पौलुस ने आकर और इसे स्पष्ट किया कि वो कैसे प्रभु भोज ले रहा था। आप समझे? उसका मांस खा रहे थे और उसका लहू पी रहे थे और इस प्रकार से उसने वे बातें कही। और अंततः एक दिन प्रेरित, यहाँ तक कि उसके पुनरुत्थान के बाद, उसमें से एक उसके कांधों पर झुका हुआ था, यूहन्ना ने प्रेम किया, वो युवा लड़का था, और उसने कहा तुम्हें इससे क्या यदि ये मनुष्य मेरे आने तक ठहरा रहे। उनके बीच ये बात चल पड़ी कि यूहन्ना यीशु के वापस आने तक नहीं मरेगा। यीशु ने ये नहीं कहा कि उसने कहा तुझे इससे क्या यदि वो रुका रहे। और फिर निसंदेह आप वचन में पढ़ते हैं, तब कैसे परमेश्वर, ये किसी उद्देश्य से कहा गया, ये बातें सारी किसी उद्देश्य के लिए हैं। परमेश्वर ने उस युवा यूहन्ना को लिया और उसे आत्मा में उठाया और उसके आगमन को देखा उस युग में जो आने वाला है। देखिए, कहा तुझे इससे क्या यदि वो रुका रहे। उसने उसे नहीं रोका शरीर में, परंतु जो वचन उसने उसके लिए कहा था उसे यहाँ तक ले आया। अब जहाँ हम हैं, अब देखिए, इसलिए सारे कार्य मिलकर भलाई के लिए हैं। रोमियो में एक बहुत ही जाना हुआ अध्याय है, मैं यहाँ पर कुछ पदों को लेना चाहता हूँ और लगभग पहले दो पद मैं सोचता हूँ ये है और पढ़ता हूँ और इसमें व्याख्या करने का यत्न करता हूँ अच्छे से अच्छा जो मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा की सहायता से। रोमियो का 12वां अध्याय। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मैंने सोचा इस प्रातः इस झुंड के लिए ये बहुत ही सुंदर था जो कुछ भी आपने किया। अब और एक जोड़ने वाला है, जैसा कि मैं समझता हूँ, और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यही जो हम सब करना चाहते हैं। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से बदलते जाओ कि परमेश्वर की सिद्ध और भावती हुई इच्छा को करें। अब हम जो बचाए जा चुके हैं जैसा हम हैं, और कि हम पवित्र आत्मा से भर चुके हैं जैसे कि हम हैं, अब हम चाहते हैं कि वो मन जो मसीह में था हम में हो, जिससे हम जीवन के स्वाभाविक बातों से बदलते जा सकें और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा करने के लिए लाए जाएं, बदलने के द्वारा परमेश्वर के आत्मा के, उसके वचन के द्वारा। अब मेरा विषय रूपांतरण की शक्ति है। मेरी बाइबल यही है। अब ये वर्षों पहले हुआ करता था जब मैं इन पुरुषों के समान युवा हुआ करता था। मुझे अपने वचन और चीजें लिखनी नहीं होती थी जब मैं पढ़ रहा था, परंतु अब जब से मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, क्यों मैं अपनी एक छोटी सी पुस्तिका रखता हूँ, जब मुझे कुछ मिलता है क्यों मैं उसे लिख लेता हूँ, इस वचन पर लिख लेता हूँ, और आदत है कि मैं वचनों की उन पंक्तियों को अपने मस्तिष्क में रखता और चलता रहता। परंतु प्रिय मित्रों, मैं इस प्रातः आपके समान युवा नहीं हूँ, परंतु मैं बूढ़ा हूँ और मैंने बहुत सी कठिन लड़ाइयाँ लड़ी और उन कठिन लड़ाइयों के लड़ने से मैं यहाँ आज प्रातः हूँ, समझे? इसलिए मुझे निश्चय है कि आप समझते हैं परमेश्वर ने मुझे इसमें रखा है ताकि मेरा जीवन एक मार्ग खोले, ये कहने को कि ये है। देखिए, तब आप सब उस मार्ग पर दौड़ते हैं, परंतु मेरे सामने मेरे लिए मार्ग खोलता है कि जाऊं, समझे? और हम एक दूसरे के लिए मार्ग खोलते हैं, और जैसा कि आप देखते हैं, कभी कभी पुराने अनुभव वाले बूढ़े हो रहे हैं और उसके निशान उस पर हैं, और जैसा पौलुस ने एक बार कहा, मैं यीशु मसीह के निशानों को अपनी देह पर लिए हूँ। आप समझे? तिमोथियस कैसे उन निशानों को देखता है, मैं समझता हूँ श्रद्धा के संग जैसा कि वो युवा तिमोथियस को समर्पित करता है। अब रूपांतरण, मैं एक सरकारी कंपनी में काम किया करता था, जहाँ हमारे पास रूपांतरण करने वाले और रूपांतर होने वाले थे। अब ये शब्द, इस शब्द का अर्थ कुछ इस प्रकार की रूपांतरण होना, जिसका अर्थ कोई चीज जो बदल गई, कोई चीज जो एक चीज से दूसरी चीज में बदल गई। जैसा कि मैं अगले 45 मिनटों में बोलना चाहता हूं या घंटे में, इस रूपांतरण पर मैं इस मूल पाठ को प्रयोग करना चाहता हूं। और मैं यहां एक चीज कह सकता हूं जो बहुत ही विचित्र लगती है, और जैसा कि भाई लियो ने अभी कहा, इसे लें और इसका अध्ययन करें थोड़ी देर के लिए, इस पर थोड़ा सा विचार करें। रूपांतरित होना, बदल जाना या कुछ भिन्न बन जाना, जैसे कि एक टैडपोल यानी कि छुच मछली, ये टैडपोल से रूपांतर होकर मेंढक में हो जाता है। देखिए, एक समय वो एक कैटफिश के समान दिखाई दिया, वो इधर उधर तैरा, उसका सिर और पूंछ हर चीज एक कैटफिश के समान दिखती थी। तब कुछ समय बाद वो खोने लगा और वो पूंछ खो देता है और वो एक वर्ग से दूसरे में रूपांतरित हो गया। मैं सोचता हूँ यही जो पॉलुस ने अपने विचार में रखा जब उसने कहा, अपने मन में बदल जाने से रूपांतरित होते जाओ। देखे मैं इसे सही से लूं, और सदृश्य न बनो। आप जानते हैं सदृश्य होना क्या है, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु अपनी बुद्धि के नए हो जाने से। एक समय जब आपने उन चीजों के लिए सोचा जो कीमती हैं, उन्हें एक और रख दिया और किसी चीज में रूपांतरित हो गए, जो आप एक समय में थे उसमें जो आप अब हैं। देखिए, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, ताकि आप सिद्ध परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा। ओ, यही जो हम सब जानना चाहते हैं कि इसे कैसे करें, समझे? यहाँ हम उससे प्रेम करते हैं, उसने हमें बचाया, अब हम जानना चाहते हैं कि क्या करें। और इस प्रातः हम एक छोटा सा कदम उठाने का यत्न कर रहे हैं कि थोड़ा सा ऊंचा उठें। कभी कभी हमें इन बातों पर जोर देना होता है, आपको समय के लिए थामे रहें जब तक हम देखें कि ये क्या निकल कर आता है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था। हम अनुभव करते हैं कि जल और बाइबल ने कहा वहाँ पहले आरंभ में कि ये संसार उबड़ खाबड़ और सुनसान था, वहाँ अंधकार को छोड़ और कुछ नहीं था। और ये कितना भयानक रूप रहा होगा, और कुछ नहीं अंधकार को छोड़कर बिना उजियाले या किसी चीज के, और पानी की हलचल और घूमने वाला तारा यहाँ वहाँ कहीं अपनी कक्षा में चक्कर काट रहा था। ये किसी खोई हुई वस्तु का लौंदा था, जैसे कि ये था जो अपना मार्ग ना खोज पा रहा हो। और यही जो हम हो गए जब हम घूमने वाले तारे हो गए, परमेश्वर से दूर, बिना आशा, बिना परमेश्वर के, बिना बस वहाँ अंधकार में हलचल, ना जानते हुए कि हम कहाँ जा रहे हैं। और परमेश्वर ने अंधकार के उस महान उत्पात को लिया और उसे अपने वचन के द्वारा अदन की वाटिका में रूपांतरित कर दिया। इसी प्रकार हम भी परमेश्वर के वचन के द्वारा रूपांतरित हुए। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए, और वो सृष्टि का पदार्थ वहाँ सूर्य के चारों ओर आ गया और सूर्य के चक्कर काटने लगा और अदन की वाटिका बन गया, क्योंकि इसने परमेश्वर का वचन माना, इसने परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पूरी की, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन से एक हलचल से रूपांतरित होकर अदन की वाटिका में हो गया। अब हम यहाँ इसलिए हैं, यही मेरा संदेश चलता रहा, परमेश्वर का वचन, हमें इसे थामे रहना चाहिए, चाहे कुछ भी होता रहे, सदा वचन के साथ बने रहें, सदा अपने उद्देश्य और विषय को परखते रहें। यदि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है, यदि ये नहीं है तो इसे छोड़ दें, समझे? परंतु ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो फिर इसे थामे रहें। अब परमेश्वर कभी कभी, जैसा कि आप ये छोटा सा झुंड इस प्रातः यहाँ पर है, उसने इसे एक ही रात्रि में घटित होने नहीं दिया, उसने होने दिया। परमेश्वर, हम तो बहुत जल्दी में रहते हैं, परमेश्वर कभी जल्दी में नहीं होता, वो बस कहता है और ये होने जा रहा है, क्योंकि जब ये कुछ कहता है तो ये होना ही है, ये होने जा रहा है, वो इसे अपना समय लेने देता है। इब्रानी बालक वे वचन के प्रसिद्ध चरित्र जो परमेश्वर का वचन सत्य होने को उस पर स्थिर थे, उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर योग्य है कि हमें आग की भट्टी से बचा ले। फिर भी देखिए, हम इस मूरत के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि ये वचन के विरुद्ध है। देखिए, यदि यद्यपि वो हमें मार देता है, वो हमें फिर जिला उठा खड़ा करेगा। आप समझे? देखिए, और वे उसने उन्हें उस बड़ी भट्टी के किनारे तक जाने दिया और उसमें पढ़ने दिया। इसके पहले ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने इस पर कोई ध्यान तक नहीं दिया, जैसा कि वो उन्हें देख भी नहीं रहा था। परंतु यद्यपि वो बराबर ध्यान रखे हुए था, वो सदा इसके लिए ध्यान रखता है। अब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए, और इसने 6000 वर्ष लिए कि ये अदन की वाटिका अस्तित्व में आए। हमें वचन में सिखाया गया, क्योंकि पृथ्वी का एक दिन ये ऐसे है जैसे 1000 वर्ष परमेश्वर के संग। इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष परमेश्वर के संग एक दिन है, इसलिए इस पृथ्वी के बनने में 6000 वर्ष लगे और इसे अदन की वाटिका तक लाया। परंतु आप देखिए, ये परमेश्वर था, सारी बुद्धि का महान स्वामी, और वो उसके मस्तिष्क में था जो वो बनाना चाहता था। जिस प्रकार मनुष्य, जब उसने ये पगडंडी बनाई, जब आप भाइयों ने जो यहाँ है पार्कर डिजाइन किया कि आप इसे कैसे बनाएंगे, ये आपकी बुद्धि में था, आप उस दर्शन पर कार्य करते रहे। इसी प्रकार से परमेश्वर ने संसार के विषय में किया, उसने योजना बनाई कि वो उसके विचारों में था। और यदि आप ध्यान दें, ये जैसे कि ये विकास क्रम के द्वारा आता है, जैसे वो सारे समय और अधिक सीख रहा था, किसी चीज को महान और महान बना रहा था। परंतु देखिए, वो इस सबसे ऊपर था और इसे और अधिक विकसित होने दिया। आप देखिए, हर चीज को वो पृथ्वी पर, वो वनस्पति और मछली और आदि आदि से लाया, ये चिड़ियों पर आया और जानवरों पर, और उसकी अपनी कल्पना में कुछ था, एक मनुष्य, और वो वहाँ रुक गया। देखिए, क्योंकि वो उसकी सिद्धता तक था जो वो चाहता था। आप इस प्रकार से आरंभ करते हैं, जैसे कि ये पद चिन्ह, आप एक नमूना रख सकते हैं और आप कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, जैसे आप सबने इस कोने से पहले सारे पत्थर हटाए, आप क्या कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सब ऐसा होगा, ये छोटी अदन वाटिका के समान दिखता है, क्योंकि ये आपके विचार में था कि क्या करना है, और आप कार्य करते चले गए। अब हम स्वयं को बदल देना चाहते हैं अपनी बुद्धि के नए हो जाने से। देखिए, ना कि वो जो इस पृथ्वी पर हमारे पास है, हम इस पृथ्वी पर क्या ढूंढने जा रहे हैं, परंतु हम किस पर आ रहे हैं, उस संसार में जो आने वाला है, अपनी बुद्धि के नए हो जाने के द्वारा बदलते चले गए। अब 6000 वर्ष परमेश्वर ने इसे बनाने के लिए लिए, और हम उत्पत्ति एक में देखते हैं, हम अब भी इसे देखते हैं, परमेश्वर का कोई उद्देश्य था जो वो घटित करना चाहता था। और बहुत से लोग उत्पत्ति को सिखाते हुए यहाँ पीछे पहले और दूसरे अध्याय में, विशेषकर तीसरे अध्याय में ऐसा प्रतीत होता है परमेश्वर स्वयं को दोहराता है, और वो कहता है, वो आगे बढ़ा और बोला, ये सारी चीजें जो उसने करी, वो कैसे उजियाला हो जाए और ये हो जाए और वो आ जाए, और वो वहाँ अभी तक एक भी चीज नहीं थी, कुछ नहीं था, वहाँ उजियाला नहीं था, वो पुराना संसार अंधकार में तैर रहा था, जल से ढका हुआ। परंतु देखिए, उसने अपना वचन बोला, और तब जब वो बोल रहा था, अब हम यहाँ उत्पत्ति एक में ध्यान देते हैं, उसने कहा, और उसने मनुष्य को अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया, अपनी समानता में उसने उसे परमेश्वर के स्वरूप में बनाया, नर और नारी करके उसने बनाया। देखिए, वो मनुष्य को बना रहा था, उसने बस वचन बोला। तब हम पाते हैं उसके बहुत दिनों के बाद, जब बीत गए, संभव है सैकड़ों वर्ष, वहाँ अब भी कोई मनुष्य न था कि भूमि को जोते, भूमि जोतने के लिए कोई भी ना था। इस प्रकार तब परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा। देखिए, उसने वचन बोला, और तब वचन को घटित होना था। और जब उसने कहा उजियाला हो जाए, हो सकता है वहाँ सैकड़ों वर्ष हो सकते हों, हो सकता है 800 वर्ष इसके पहले की उजियाला हो, परंतु ये घटित हुआ क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा। और परमेश्वर एक कलीसिया बनाने जा रहा था, मैं चिंता नहीं करता कितने अंधकार के युगों में से होकर निकलना पड़ा, और जो कुछ भी हो, वो एक कलीसिया बिना दाग और झुर्री के बनाने जा रहा है, चाहे हम उसके भाग हों या ना हो, क्योंकि वो पहले ये कह चुका है, इसलिए ये होने जा रहा है, ये वहाँ होने जा रहा है। और उसने आज्ञा दी कि ये पौधे के जीवन में बदल जाए, और जीवन जो उसने रखा, उसने ये वचन कहे, जैसे खजूर का वृक्ष हो जाए और बांज का वृक्ष हो जाए, देवदार हो जाए। वहाँ रेगिस्तान में देखिए, जहाँ हम ट्यूसान में रहते हैं, वहाँ कैक्टस हैं, कैक्टस बढ़ रहे हैं, सब प्रकार के कैक्टस। वहाँ से केवल 30 मिनट पहाड़ की चोटी पर शेरमन के चीड़ हैं। अब ये कैक्टस वहाँ नहीं उगेगा, ना ही वो शेरमन चीड़ नीचे यहाँ उगेगा। अब वो बुद्धि कहाँ थी जिसने वो बीज बोया? देखिए, उन्हें कहीं से तो आना था, ये परमेश्वर का वचन था, ये हो जाए और ये था। अब हम ये सब पाते हैं उसके ये बनाने के बाद, इसे उसके प्रकार में बदल रहा था, और उसका जीवन और ये सब परमेश्वर के वचन के द्वारा रखा गया, वो सृष्टि करता। ये सब हम पाते हैं कि ये सब एक मुख्यालय में आगे बढ़ रहा था, जिसे अदन की वाटिका कहा गया, और परमेश्वर ने अपने पुत्र को रखा और अपने पुत्र की दुल्हन को उसमें स्थान में। ये महान सृष्टि, इसके लिए उसके पास एक कारण था। उसने हर चीज को इतना सुंदर बनाया। उसने फूलों और जीवन और चिड़ियाओं को बनाया। वहाँ कोई मृत्यु ना थी, कोई पाप नहीं, कोई दुख बीमारी नहीं, और ये सारी महान चीजें एक बड़े मुख्यालय की ओर में बढ़ रही थी, जो कि अदन की वाटिका थी। और वहाँ उसने पुत्र आदम को रखा और आदम की दुल्हन पत्नी को। अब आप कह सकते हैं ये उसकी पत्नी थी, ये उसकी संभावित पत्नी थी, परंतु वो कभी नहीं, अभी तक वास्तव में उसकी पत्नी नहीं थी। जैसा कि वचन में हम पाते हैं, जहाँ कहा गया, यूसुफ तू दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को लाने से न डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा का है। समझे? अब ये उसकी पत्नी थी जब उसने उससे विवाह की प्रतिज्ञा की या उसे ले, परंतु अब भी वो उसकी पत्नी न थी, अब भी, क्योंकि उसने उसे पत्नी करके कभी न जाना था। इसलिए ऐसे ही ये यहाँ पर है। यही कारण है कि मैंने कहा परमेश्वर का पुत्र और उसकी दुल्हन। आदम ने अपनी पत्नी को एक पत्नी के समान कभी नहीं जाना था, परंतु अभी वो उसकी पत्नी थी, संभावित, जैसे कि इस समय अब कलीसिया और मसीह। अब फिर सब विश्राम कर सकें, क्योंकि परमेश्वर के सारे वचन बीज जो उसने बोले थे अपने ही प्रकार के उगे। पृथ्वी वहाँ पर आई, वहाँ उजियाला था, वहाँ सूर्य चमका था, जब उसने सूर्य को चमकने दिया। अब क्यों उसने सूर्य को चमकाया? ये उसके मस्तिष्क में था, देखिए, कि यदि सूर्य नहीं चमकता तो फूल नहीं बढ़ेंगे, जो वो उसे अस्तित्व में आने के लिए बोलता है। उसने हर चीज उद्देश्य के लिए बनाई है, ये जो भी है, जैसे एक पेड़ ये एक विशेष बीज रखता है, वो एक सेब उगाता है, वो वाटिका के फल बनाता है, और आदि आदि, ये सब उसके उद्देश्य के लिए हैं। और हर चीज को घटित होना था, और उसने ये बोला था। अब केवल एक ही बात जो उसने करनी थी, इस बोलने के पश्चात वो, बल्कि ये बोल रहा था, वो विश्राम के लिए जा सकता था, क्योंकि उसने ये बोला था, और ये सब घटित होना था, क्योंकि उसने ये बोला था। मैं नहीं जानता इसे किसनों में से होकर निकलना था, इसके पहले कि ये घटित हो, कितने सारे अस्वीकार और जो भी हो, परंतु इसे घटित होना ही था। उसने कहा वो घटित होगा जो उसने बोला था। यही चीज अंत के दिनों में कलीसिया के विषय में है। वो एक दुल्हन लेने जा रहा है, वो योग्य है कि इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करे। यदि हम उसका अनुकरण नहीं करते, उसे कोई और मिलेगा जो उसका अनुकरण करेगा। समझे? वो इसे लेने ही वाला है, क्योंकि वो पहले ही इसे बोल चुका है। जो भी वो कहता है उसे वैसे ही होना है, ये बदल नहीं सकता, इसे वैसे ही आना है, क्योंकि उसने ये कहा ये होगा। और ये सारी महान बात जो वो जानता है वो घटित होगी। उसके ये बोलने के बाद वो विश्राम कर सकता था। हर चीज नियंत्रण में है। उसका बीज उसका वचन था, और उसका वचन एक बीज है, यीशु ने कहा ये था, और हर चीज ठीक होगी, क्योंकि उसने ये कहा था, ये अपने ही प्रकार का उगाएगा, केवल अपनी ही जाति में रूपांतरित। देखिए, उसका वचन अपने ही प्रकार का होगा। यदि उसने कहा एक ताड़ का वृक्ष, उसका अर्थ ये नहीं था एक ताड़ और बांझ मिला जुला, उसका अर्थ एक ताड़ का वृक्ष यहाँ पर और बांझ का वृक्ष यहाँ पर, हर चीज अपने स्थान पर स्थित। ओ, यदि हम केवल ये सीख सकें कि हम वचन का कौन सा भाग है, हमें अपना स्थान लेना ही चाहिए, कोई मतलब नहीं ये क्या है। मैं यहाँ एक छोटी बहन के लिए सोचता हूँ जो पहिए वाली कुर्सी में है। कभी कभी कितनी बार निष्ठापूर्ण प्रार्थना इस पर की गई, तब हम नहीं समझते, इसलिए हम बस ये परमेश्वर को समर्पित करते हैं, और ये आपके बीच एक फूल के समान है, अपनी खुशी और हर चीज के साथ। देखिए, हम उठकर घूम सकते हैं और उसे करने के लिए कितनी प्रतीक्षा करेगी, परंतु वो फिर भी आनंदित है, जैसे कि वो बैठी है। मैं इस महिला को देख सदा उत्साहित होता हूँ, क्योंकि वो, हम सब चंगाई के विषय में विश्वास रखते हैं, हमने परमेश्वर को इससे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते देखा है, और ये भी ये जानती है, परंतु वो अपना स्थान लेने के लिए तैयार है। देखिए, ये जो भी है यही जो हम चाहते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये दाऊद था जिसने कहा मैं प्रभु की डेवड़ी पर पावदान बनना चाहूँगा बजाय कि दुष्ट के तंबुओं में वास करूँ। कोई मतलब नहीं ये क्या है, अपना स्थान लूंगा। कभी कभी आपको हर चीज जो संसार में आपको प्रिय है उससे अलग होना पड़ता है कि आप अपने स्थान को आप लें, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। मैं निश्चित हूँ कि आप पंक्तियों के बीच में पढ़ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। समझे? कभी कभी पृथ्वी पर बहुत ही प्रिय व्यक्ति आपको उनसे हाथ मिलाना पड़ता है कि अपने स्थान को मसीह में लें, जहाँ के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। समझे? परंतु परमेश्वर क्या कर रहा है, आपको जो आप थे उससे रूपांतरित कर रहा है। हो सकता है पुत्री या पुत्र या ये जो भी है, कभी कभी प्रिय परिवार से वो आपको कहीं रखता है, क्योंकि उसके करने की यही विधि है। देखिए, आपकी बुद्धि के नए हो जाने से परमेश्वर के वचन का पालन करना कोई मतलब नहीं कि कितना मूल्य है। समझे? ये चीजें नहीं आती, इसने नहीं पुकारा, हमारा छुटकारा कोई मामूली चीज नहीं, ये परमेश्वर के पुत्र को हमारे लिए मरना पड़ा। समझे? ये नहीं, उपयोगिता की चीजें बड़े दामों में आती हैं। इस संदेश को लाना ये सरल नहीं था। समझे? नहीं, ये नहीं था। मुझे हर चीज को जो प्रिय थी छोड़नी पड़ी, यहाँ तक कि मेरे अपने लोग, हर कोई। परंतु आप इसका मूल्य देखें, आप देखिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, और ये करने को जिसको कि जानते हुए कि मुझ में कुछ है। जब वे कहा करते थे भाई वे मुझे अलग करने जा रहे थे, सोचा कि मैं अपने आपे में नहीं हूँ, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दे रहा था कलीसिया के विरुद्ध और ये सारी चीजें। उन्होंने कहा वो पागल है, परंतु आप देखिए कोई मतलब नहीं कि उन्होंने क्या कहा, कुछ तो करना ही था। और परमेश्वर बस एक व्यक्ति को लेता है, अपने हाथ में रखता है और कहता है ये कर और तू ये कर। संत पौलुस के लिए इसका कितना दाम हो सकता है। गमलीएल की अधीनता में सिखाया गया उस दिन का महान शिक्षक, और वे आए वही चीज जो विधर्मी समझी गई, वे बातें जो उसने सोची कि ये बेकार की बातें हैं जो कलीसिया के लिए हो सकती थी, वो आया और उसका भाग बन गया। एक विचित्र बात, और परमेश्वर कैसे आश्चर्यजनक रीति से कार्य करता है। विचित्र रीति में उसकी आश्चर्यजनक कार्य विधि है। जब परमेश्वर ने बोल दिया, उसे मालूम है कि उसका वचन एक बीज था, और ये हो सकता है ये अपने ही प्रकार का लाएगा। अब ये आज्ञा थी कि केवल अपने ही प्रकार का लेकर आए, और ये सदा यही करेगा यदि मनुष्य इसमें गड़बड़ न करे। और ऐसे ही परमेश्वर की कलीसिया और हर चीज अपने ही प्रकार का लाएगा जैसे ये पहले था, यदि धर्म विज्ञानी इस वचन में गड़बड़ ना करें, इसे कहीं और रखने का प्रयत्न करें या कुछ और करें। परमेश्वर ने ये बोला है, और मतलब नहीं कि वे कितनी भी मिलावट करने का यत्न करें और गड़बड़ और आदि आदि, ये अपने ही प्रकार का लाने जा रहा है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आशा करता हूँ कि ये ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं आप पर चिल्ला रहा हूँ। क्या ये बहुत तेज है? अब देखिए, हम हर चीज को क्रम में पाते हैं। परमेश्वर ने ये बोला, उसने कहा ऐसा हो जाए और एक अदन हो जाए, सुंदर सुंदर फूल हो जाए, मेरा पुत्र हो जाए मेरी ही सूरत में, वहाँ अदन की वाटिका में खड़ा हो और उसकी दुल्हन उसके बराबर में खड़ी हो। ओ कितना सुंदर! वो क्या था? वो पिता, और वो एक पिता था। आप देखें, इसलिए उसके अपने बालक आ रहे हैं, और उसने उनके लिए अदन की वाटिका बनाई। उसे अपने बालकों के लिए करना अच्छा लगता था। क्या आपको याद नहीं कि कैसे आपकी माए, कि कैसे कोई मतलब नहीं, यदि आपके पास भत्ते की तालिका थी, यदि छोटे को जूते का जोड़ा चाहिए था जो उसे पसंद है, आप ये करेंगे, ये जो भी था, अपने बालकों के लिए कुछ भी करेंगे। पिता, आप थोड़ा और कड़ा परिश्रम करेंगे कि अपने बालकों के लिए कुछ ले पाए, समझे? ये दर्शाता है कि हम यहाँ नीचे हैं। ये एक अभिभावक, वो संपूर्णता में अभिभावक है। देखिए, वो कितना अधिक! कोई आश्चर्य नहीं, प्रेरित ने कहा, आंख ने नहीं देखा या कान ने नहीं सुना, ना ही मनुष्य के हृदय में आया कि परमेश्वर के पास अपने प्रेम करने वालों के लिए क्या रखा हुआ है। हम अपने को समझा नहीं सकते। हमारा मस्तिष्क उस चीज को समझने योग्य नहीं है, उस दिशा में जो परमेश्वर ने हमारे लिए हम में रखा है जो उससे प्रेम करते हैं। देखिए, मैं कल्पना कर सकता हूँ ये क्या होगा, मैं सोच सकता हूँ ये क्या होगा, परंतु मेरा मस्तिष्क इतना योग्य नहीं है कि सोचे कि ये कितना महान है, ये उससे कहीं आगे है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि स्वर्ग क्या होगा जब हम वहाँ पर होंगे, और युवा और हर कोई पाप नहीं, और कोई पाप नहीं, और ओह क्या ही सुंदर स्थान। परंतु देखिए, ये उससे भी आगे है। देखिए, हम यहाँ तक कि ये मनुष्य के हृदय में भी न समाया जो परमेश्वर के पास उनके लिए है रखा है। उसने ये बोला और ये वैसे ही होने जा रहा है। अब इस पर इस सारी सुंदर तैयारी जो उसने वहाँ पर की, उसकी अपनी, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि उस वचन में तैयारी, परंतु एक प्रकार का जैसे क्या बालक के आने से पहले माँ क्या वे इसे तैयारी नहीं करते, वे सब छोटी छोटी जूतियाँ और सारी चीजें तैयार, आप जानते हैं, उस आने वाले छोटे से प्रेम के भाग के लिए जो परमेश्वर भेज रहा है, ये लेते हैं। यही परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए किया। उसने इस अदन वाटिका की सृष्टि की, उसने इसे बोला, ये उसके मस्तिष्क में था, और जब वो इसे कहता है तो इसे घटित होना ही है। अब इसे आप याद रखें, जो वो कहता है उसे होना ही है। देखिए, वो नहीं, उसे कोई नहीं रोक सकता, इसे होने से कोई नहीं रोक सकता, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस घटित होने से रोके। परमेश्वर ने ऐसा कहा, बस ये तय हो गया। परमेश्वर ने ये कहा, ये होने जा रहा है। अब ये सब उसके विचारों में था, उसने कहा ये हो जाए, अब ये उत्पत्ति एक है, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, वो बीज बो रहा था, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और वो जानता था कि ऐसा घटित होने जा रहा है, क्योंकि ये बदल नहीं सकता। अब ये हमें विश्वास देता है, और जो उसने यहाँ कहा ये होने जा रहा है, इसलिए ये हो कि ये बीज हमारे हृदयों में गिरे, ताकि हम उसकी उपज वाली भूमि हो सकें। देखिए, अपने हृदयों में, और हम इस स्थान पर कार्य करें जो उसने हम में रखा है। अंत के दिनों में हमारे हृदयों में बीज गिरे, प्रभु आपका वचन मेरे हृदय में गिरे, और कोई अविश्वास न हो। जैसे अब्राहम जब वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, देखने से असंभव लगता था, वे इसे कैसे करने जा रहे हैं, इस प्रकार से ये कैसे होने जा रहा है, उसने इस पर कभी भी विचार नहीं किया। उसने केवल परमेश्वर का वचन स्वीकार किया और इसका विश्वास करता चला गया और परमेश्वर ने ये कर दिया। अब परमेश्वर ने ये सारी बातें कही हैं, इसलिए वो जानता था कि ये होगा और ये हुआ। वो उसी तरह का लेकर आया। अब उसने तब ये रूपांतरित कर दिया था सारे बीज जीवित प्राणियों में और सृष्टि जो कि उसे होना था, ये वैसे ही आया जैसे उसने कहा ये होगा। उसने कहा ये हो जाए, हो सकता है सैकड़ों सैकड़ों वर्ष बीत गए, परंतु हम यहाँ ये एक सुंदर वाटिका पाते हैं, बड़ी बड़ी चिड़ियाएं, एक उड़ान। उन चिड़ियाओं को मरना नहीं था और भेड़िया और मेमना एक साथ खा रहे थे और सिंह चीता और बैल, और वहाँ कोई हत्या नहीं थी, कोई मृत्यु दुख नहीं था, और वहाँ आदम और हवा अदन की वाटिका में घूम रहे थे। हर बीज उगा, ये कभी और कुछ नहीं कर सकता था, ये कुछ और नहीं कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये इस प्रकार से हो जाए, इसे वैसा ही होना था। ओ, कैसे मैं इस पर एक मिनट के लिए रुकना चाहता हूँ कि कहूँ यही जहाँ हम इसका सामना कर रहे हैं, उस वचन का पूरा होना। अब परमेश्वर ने कहा हो जाए और यहाँ ये आ गया, पहले सिद्ध ठीक वैसे ही। अब ये पेड़ केवल इसी पेड़ को ला सकता है, ये पेड़ केवल इसी पेड़ को ला सकता है, और आदम परमेश्वर का एक पुत्र केवल परमेश्वर के पुत्र को ही उत्पन्न कर सकता है। देखिए, आप समझे मेरा क्या अर्थ है? ये हर चीज अपने ही प्रकार की, और इसलिए परमेश्वर कह सकता था भाई अब मैं थोड़ा सा विश्राम कर लूं। और क्या आपने ध्यान दिया, ये बहुत ही थोड़े वचन जो कभी परमेश्वर ने बोले, वास्तव में उस समय के बाद गिरावट के पश्चात अपने भविष्यवक्ताओं को उसने इसे दे दिया, और अब वे वचन को लाते हैं। आप समझे, परमेश्वर ने विश्राम किया, उसके पास अब और करने को नहीं। वे उसके मुख्यालयों पर जाते हैं और द्वार खटखटाते हैं, पिता ये क्या है, और वो वचन उनके पास नीचे भेजता है उनके द्वारा। उसकी एक विधि है और उन चीजों के करने का एक मार्ग है, बस ये हो। और ये इस प्रकार से था, हर चीज अपने ही बीज का प्रकार उत्पन्न करेगी। अब जब हर चीज बहुत सुंदर लग रही है और हर चीज घटित हो रही है जैसा कि परमेश्वर ने बोला था, अब यहाँ तेज गंदा धोखेबाज आता है। अब यही है जिसके विषय में मैं आपको चेतावनी देने का यत्न कर रहा हूँ। जब आप देखते हैं कि परमेश्वर का बीज पकड़ बनानी आरंभ करता है कि बढ़े, तो उस व्यक्ति को भीतर आते देखें, चालाक जितना वो हो सकता है वचन का उल्लेख देता है उसे जिसके पास नहीं है। देखिए, उसका ध्यान रखें, क्योंकि वो एक धोखेबाज है। मैं इसको कहने जा रहा हूँ बजाय एक पुष्टिकर्ता के, पुष्टि होते हुए वो एक बिगाड़ने वाला है, उन चीजों को बिगाड़ता है जिसकी पुष्टि हो चुकी है। वो एक बिगाड़ने वाला है, वो एक बिगाड़ने वाला या एक मिलावट करने वाला या मूल बीज को और एक मूल योजना को भ्रष्ट करने वाला है। अब आप यहाँ देखते हैं, जैसे कि यहाँ इस प्रातः झुंड में आपके पास एक योजना है, आपके पास एक दर्शन है। अब आप उस भ्रष्टाचारी पे ध्यान दें। ओ, वो एक धूर्त चालाक जितना की हो सकता है। अब देखिए, परंतु अपना दर्शन बनाए रखें, लड़के उसे ही पकड़े रहना। अब हम भी ये पाते हैं, जब वो भीतर आता है वो उस बीज को बिगाड़ता है। वो उस बीज को उपज की भूमि में जाकर बिगाड़ता है, इसके पहले कि वो वहाँ पहुँचे कि उस सुंदर अदन वाटिका को भ्रष्ट करे, जहाँ स्वर्ग केवल एक ही चीज है, जो पुनः स्थिति में जहाँ अब हम हैं, हम अपने मार्ग पे हैं कि वापस परमेश्वर की सृष्टि के मूल आरंभ में आ जाएं, फिर से अदन की वाटिका में, पति और पत्नी बिना किसी पाप के या कोई चीज के अनंत तक जीवित रहें। परंतु अब वो चाहता है कि हमें हमारे विचारों को रूपांतरित कर दे, नए होने के द्वारा या रूपांतरण के द्वारा, हमारे मस्तिष्क के नए होने के द्वारा रूपांतरण हुआ। अब शैतान अंदर आता और वचन को बिगाड़ता है, कुछ और कहकर बनाता है कि ये ऐसा नहीं। अब यही उसने आरंभ में किया था। और अब ध्यान दें, ये इस प्रातः सुनने में लोगों को विचित्र लगने वाला है यदि मैं प्रतीक्षा न करूं और बहुत से विचारों को आधारित न करूं, इसके पहले कि मैं अपने निरंतर विचार को लूं, जिस पर कि मैं आपको लाना चाहता हूं। क्या ये बिगाड़ने वाला अंदर आया और जैसा कि परमेश्वर ने मूल वचन के साथ 6000 वर्ष लिए कि हर वचन का अपना ही प्रकार उत्पन्न करे और चीजें जो कि उसने बनाई परमेश्वर के अपने ही वचन पर होंगी अपने ही प्रकार का उत्पन्न करेगा और बिगाड़ने वाला वाले ने 6000 वर्ष लिए कि परमेश्वर के उस वचन को विकृत करे, और उसने क्या किया, वो अपने लिए एक नए प्रकार का अदन लेकर के आया, शैतान का अदन, यही जहां अब हम आज रह रहे हैं। उसने ये कैसे किया, ये कैसे हो सका? अब आघात करने वाली बात ये है कि उसने ये कैसे किया, और यही जहां हमें होना है, जिसके लिए मैं यहां पर हूं कि आपके सामने इसे रखूं, ताकि अब आप इसका अध्ययन कर सकें और यहां भाइयों के साथ और आदि आदि आने वाले सप्ताहों में, ताकि आप देख सकें कि शैतान ने ये कैसे किया और देखें कि वो कितना चालाक है और वो कितना धूर्त है। अब उसने इन बीजों को विकृत किया और वो इन्हें नष्ट नहीं कर सकता, बस बिगाड़ सकता है। अब हम अनुभव करते हैं कि पाप धार्मिकता का बिगड़ा हुआ रूप है, ये बस झूठ सत्य को गलत दर्शाया गया। देखिए, कोई भी चीज व्यभिचार, सही व्यवहार जिसे परमेश्वर ने ठहराया, उसे गलत रीति से लिया। देखिए, कोई भी चीज, और मृत्यु जीवन का बिगड़ा रूप, मृत्यु बस लेती है, जीवन को विकृत करती है। अब उसके पास 6000 वर्ष उसके विष छिड़काव के साथ कार्य करने को है, और उसने इसे कैसे किया, अब ये प्रहारी भाग है। अब इसे ध्यान से सुने, उसने ये सभ्यता के द्वारा किया। अब ये विचित्र प्रतीत होता है, परंतु वो यही है। मैं आपके सामने एक वक्तव्य देने जा रहा हूँ, ये कुछ मिनटों में आपको अनुमान लगाने देगा, मैं आशा करता हूँ कि नहीं। परंतु क्या आपने ये अनुभव किया? अब मैं अज्ञानता का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, परंतु क्या आप जानते हैं कि सभ्यता, विज्ञान, शिक्षा और हर चीज आज जिन्हें हम आज हृदय में संजोए रखते हैं, महान है, यही शैतान के यंत्र हैं। यहाँ तक कि सभ्यता, सभ्यता कभी भी परमेश्वर के द्वारा नहीं आती, सभ्यता शैतान से आती है। अब मैं इसे आपको वचन से प्रमाणित करूंगा कुछ ही मिनटों में। सभ्यता परमेश्वर की नहीं है, मैं आपको दर्शा दूं। इस सभ्यता में जैसे जैसे हम विज्ञान के द्वारा कार्य करते हैं और सभ्य हो जाते हैं, हम सदा स्वयं को मार रहे हैं, समझे? और इस सभ्यता ने इमारतों की चोटियां बनाई हैं, और इस सभ्यता में हमें मृत्यु मिली है, हमें इस सभ्यता में पाप मिला है, इस सभ्यता में हमें बीमारी मिली है, ये परमेश्वर का नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर इसका उसका महान अपना महान राज्य जो आना है, हमारी सभ्यता होगी, परंतु कोई चीज इस प्रकार की नहीं होगी, ये विज्ञान के द्वारा नहीं होगी, ये विश्वास की सभ्यता होगी, वचन के द्वारा, समझे? ये वैज्ञानिक सभ्यता जो हमारे पास है, बिल्कुल ठीक शैतान का फंदा है, और यही जिससे उसने लोगों को मारा है, यही जिससे हमें मार रहा है हर दिन, इसी से, इस प्रकार से, जैसा कि हम प्रतिदिन खाते तो बजाय जीने के हम मरते हैं। उन्होंने हर चीज को इतना दूषित कर दिया है कि इसका इतना सारा लो और इसको इसके साथ मिला दो और इसको इसकी मिलावट कर दो जब तक मरने वाला ना हो जाए। ये मरती हुई जाती है और कोई मतलब नहीं आप क्या करने का यत्न करते हैं, आप मरते हैं। आपने बीती रात आप लोगों ने उन अफ्रीकनों का चित्र देखा था, आप जानते हैं क्यों? उनके पास पेंसिलिन कभी नहीं था। आप जानते हैं क्यों उनके पास पेंसिलिन नहीं था? वे लोग हमसे अधिक लंबा जीते थे। वे ये भी नहीं जानते कि वे कीटाणु उन्हें परेशान नहीं करते। देखिए, क्यों एक कीटाणु अपने हाथ खड़े कर देता है और उनसे हार जाते हैं, समझे? क्योंकि वो, देखिए, वो नहीं, उनको नहीं, क्योंकि उनके पास ये सब नहीं है। हम उन्हें पहचानने के लिए विज्ञान को लेंगे, जैसे पेंसिलिन या कुछ वे हमारे अंदर डालते हैं कि इस बीमारी को बाहर निकाल दें, ये कुछ और नुकसान कर देता है और किसी और चीज के लिए उपजाऊ बना देता है, समझे? अब ये वो नहीं करता, समझे? अब कोई, आप में से बहुत से लोग खेतों पर से आए हैं, कोई भी जानता है कि अच्छे स्वस्थ पौधे को किसी छिड़काव की आवश्यकता नहीं होती, इसमें स्वयं को भगाने वाला होता है वो जीवन का, और कीटाणु इस पर आएगा भी नहीं, उस वास्तविक स्वस्थ पौधे पर। ये गर्मी का पौधा है, वो दोगला पौधा है, आपको इसकी देखभाल करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ पश्चिमी लोग हैं, पुराने समय की लंबे सींग वाली गायों को याद करें। आज आप कहते हैं आपके पास अच्छी गायें हैं, हेयरफोर्ड से मिली हैं। क्या आप आपके पास नहीं है? वे लंबे सींग वाली गायें उस बूढ़ी वाली को नहीं ले रहे हैं, परंतु सर्दियों में वो बाहर हिरण के समान होगी, वो पतली और चीज होगी, परंतु वो दुगनी होगी। ये हेयरफोर्ड, आप उसके नीचे चारा खींचे, जब आप उसका चित्र पेट तक उतारते हैं कि उसका मांस पिछली टांगों तक दिखाते हैं, और ये क्या है? आप उसे बाहर खोल दें, वो मर जाएगा, वो जाड़ा नहीं काट सकती यदि उसे काटना पड़े। आपको उसे खाना खिलाना है और सब कुछ उसकी देखभाल के लिए, और चारों ओर उसे पुचकारते रहें, देखते भालते रहें, वो दोगली है, समझे? परंतु एक वास्तविक मूल लंबे सींग वाली, उसे जरा खोलें। आज हमारे मसीहों के साथ यही है, आज हमारे पास बहुत से हैं, हमें उनकी चापलूसी और निवेदन करने होते हैं कि उन्हें कलीसिया में डीकन बनाएं, पीठ थपथपाएं, और अच्छे पद पर कलीसिया में रखें, या यदि आप नहीं करते क्यों वो नहीं आएगा, यदि आप ये नहीं करते हैं ये वो आदि आदि ये देखभाल करना। क्या आप एक वास्तविक मसीही से ऐसा होने की कल्पना करते हैं? वे कठोर और मजबूत होते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि संत पौलुस इस प्रकार का मसीही था? क्या आप कल्पना कर सकते हैं पतरस, यदि आप मुझे बिशप नहीं बनाते हैं मैं नहीं जानता मैं अमुक अमुक में जाकर सदस्य हो जाऊंगा। वे मजबूत लोग, वे विश्वास के लोग, वे परमेश्वर के संग रहे, वे परमेश्वर के संग चले, वे थोड़ा बोलने वाले, उन्होंने परमेश्वर की सेवा दिन और रात निरंतर की। आपको उन पर छिड़काव नहीं करना और उनकी देखभाल और उन्हें ये वो दें। वे कठोर पुरुष थे, वे वास्तविक बीज थे, नामधारियों के दोगले नहीं। यदि आप मेथोडिस्ट के लोगों मुझसे ठीक से व्यवहार नहीं किया मैं बैप्टिस्ट में चला जाऊंगा, बैप्टिस्ट उन्होंने सही व्यवहार नहीं किया तो मैं पेंटेकोस्टल में चला जाऊंगा, यदि उन्होंने सही व्यवहार नहीं किया तो मैं वापस कैथोलिक में चला जाऊंगा, या जो भी हो। देखिए ये दोगले, इन पर छिड़काव करते रहें। जी हाँ डॉक्टर, आदरणीय भाई, अमुक अमुक, ये मसीहत नहीं है। मसीहत कोई उपनाम नहीं पूछती, कोई पक्ष नहीं मांगती, ये केवल परमेश्वर को जानती है। ये मूल बीज है, ये परमेश्वर से प्रेम करता है और एक दूसरे से प्रेम, उन पर कोई छिड़काव नहीं होता और उनकी देखभाल करनी और उनकी पीठ थपथपाते रहना और कहते रहे जी हाँ बहुत अच्छी है ये बहन, मैं सोचता हूँ ये बहन के लिए ठीक है कि छोटे बाल रखे और ये वाले नहीं, और ऐसी कोई बात नहीं है, और उन्हें इसके साथ चलने दें, ये मजबूत है, ये सुसमाचार है, इसे वहाँ बाहर रखें, इसे जहाँ चाहे डाल देंगे, मसीह इससे प्रेम करते हैं। क्या मुझे जाना चाहिए स्वर्ग को आराम कूलों की सेज पर, जबकि दूसरे इनाम जीतने के लिए लड़े और लहू के सागर से पार हुए? क्या मेरी पीठ थपथपाई जानी चाहिए और ये और वो बालकों जैसी देखभाल? अपने स्थान की आशा वहाँ कठोर मजबूतों के साथ करता हूँ, मैं आशा नहीं करता कि मैं बिना दागों के इनाम के साथ आऊँ। यदि मुझे लड़ना ही चाहिए, मुझे राज्य करना ही चाहिए तो मेरा साहस बढ़ाएं प्रभु। देखिए मुझे मसीह के समान खड़ा होने दें, ना कि एक दोगला पौधा जिसे देखभाल और थपथपाने होता है और किसी चीज में लेकर आए। जो भी हो आप मसीहत में लाए नहीं गए, आप मसीहत में जन्मे हैं, आप एक नई सृष्टि हो गए हैं, आप परमेश्वर के बीज हैं जो पृथ्वी पर आया है। अब हम पाते हैं कि उसने छिड़का, ये विष छिड़का, और ये छिड़काव जो छिड़का गया आधुनिक समझ का, शिक्षा का, विज्ञान और सभ्यता था, वही चीजें जिनको हम बहुत सजोए रहते हैं। क्या आपने रुककर कभी सोचा कि हमारा बड़ा शत्रु जो आज स्वाभाविक जीवन में है हमारे राष्ट्रों के मध्य में साम्यवाद है? आज का ईश्वर राष्ट्रों के बीच में क्या है? साम्यवाद। साम्यवाद का ईश्वर क्या है? सभ्यता और शिक्षा, विज्ञान। क्या ये ठीक बात नहीं? यही जिस पर वे जीते और फूलते हैं, विज्ञान, वैज्ञानिकता, विज्ञान, विज्ञान का ईश्वर। अब यदि आप चाहें और विश्व के छिड़काव के साथ इस आधुनिक सभ्यता, विज्ञान और शिक्षा है, अब मुझे ये सिद्ध करने दें कि शिक्षा और सभ्यता शैतान की ओर से आती है। अब आइए यहाँ वापस चलें और देखें, यदि आप उत्पत्ति के चौथे अध्याय में, ठीक है आइए उत्पत्ति का 4:16 पद से आरंभ करें, 14 यहाँ, या उत्पत्ति 4, मुझे क्षमा करें। अब ध्यान दें शैतान, आप लोग जो इन टेपों का अनुकरण करते हैं यहाँ हमारे भाइयों के साथ, आपने मुझे सर्प के वंश पर प्रचार करते सुना है और इसका इनकार नहीं किया जा सकता। ये उन 7 मोहरों में से एक में खोला गया, ये छिपा हुआ था। अब यदि बालक इस प्रकार से ऊपर बढ़े, देखिए इस प्रकार की शिक्षा में, यही जो उनके माता पिता थे, उनमें उनके माँ बाप का स्वभाव है, उनके नामधारी और आदि आदि, उन्हें ये विश्वास करना ही है। वे ये विश्वास करते हैं क्योंकि वे इन अभिभावकों के अधीन जन्मे हैं, परंतु आज उन अभिभावकों के अधीन नहीं जन्मे। हमारा अभिभावक वचन है, और वचन ठीक है कहते हैं मैं परमेश्वर के अधीन भी जन्मा था उस युग के लिए, परंतु ये चरमोत्कर्ष युग है, ये युग उन नामधारियों से आगे है, ये आना ही था, आना ही चाहिए। परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया है कि वहाँ आना ही है, उन 7 मोहरों को खुलना चाहिए, इसे लौदीकिया काल में होना है था। और मैं किसी भी संदेह से परे सोचता हूँ, ना कि जैसे हम घमंड करते हैं, हमें घमंड नहीं करना, केवल यीशु मसीह पर, हम में से किसी को भी नहीं, हम केवल यीशु मसीह पर घमंड करते हैं, परंतु हम धन्यवादित हैं जाने के सौभाग्य के लिए, किसी के द्वारा, किसी भी संदेश से परे। परमेश्वर ने हमें इन अंत के दिनों में चुना है और स्वर्गीय चिन्हों के द्वारा ये प्रमाणित किया गया है और पृथ्वी पर, उनमें से प्रत्येक सीधा वचन पर वापस आता है, ये प्रमाणित करने को कि ये ऐसा ही है, ये युग जिसमें हम जीते हैं वो संदेश है और वो कैसा है। हम संप्रदाय नहीं है, हम धर्मांधतों का झुंड नहीं, हम परमेश्वर के दास जो पवित्र आत्मा के द्वारा बुलाए गए हैं। आपको सब प्रकार के नाम दिए जाएंगे, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है। अब स्मरण रखें, शैतान का पुत्र केन था। अब मैं सोचता हूँ आपने इन सब टेपों को सुना है, जो कि मैंने यहाँ आपके पुस्तकालय में देखा है उनको। अब स्मरण रखें, हवा शैतान से गर्भवती हुई, और उसी दिन ट्यूसान में हमारे पास एक मुकदमा है। यदि वो हो जाती है, वो दो पुरुषों के साथ रही, वो दो भिन्न प्रकार के बालक जन्मा सकती है। हम ये जानते हैं कि मुझे ये कुत्तों के पैदा होने में पता चला, और आदि आदि, यदि ये सही प्रकार से है। इसलिए शैतान संभवतः उस प्रातः वो उस दुष्ट से मिली, जो कि सर्प था, रेंगने वाला नहीं, परंतु एक पशु, सबसे धूर्त, चालाक और सारे पशुओं में तेज, बस मनुष्य के नीचे वाला। और मनुष्य स्वयं पशु, और हम स्तनधारी हैं, गर्म लहू वाले जानवर। और यहाँ शैतान अगली कड़ी था, वो सर्प मनुष्य से अगली चीज, चिंपैंजी से, जो कि मनुष्य और चिंपैंजी के बीच का। अब विज्ञान उस खोई हुई कड़ी को ढूंढ रहा है, और इसे नीचे ले आने से वो इतना छिप गया, यहाँ तक कि हड्डियाँ भी मनुष्य जैसी नहीं लगती। देखिए, उसे रेंगने वाला बना रहा है। अब हम पाते हैं कि इसने हवा को अदन की वाटिका में पाया। ये युवा स्त्री पाप को नहीं जानती थी, उसका नंगापन क्या है नहीं जानती थी, और वो जानता था। वो तेज, चालाक, बुद्धिमान, और उसने उसे बताया। वो बीज, वो फल मन भावना था, और ये चाहने योग्य था। और फिर देखिए, दोपहर बाद उसने आदम को वही चीज करने के लिए उकसाया, उसे बता रही थी कि ये क्या था। और तब आदम जानबूझकर, जानते हुए कि उसे ये नहीं करना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ गया और ये व्यवहार किया, अंततः जो कि वो इस पर आ गया। परंतु देखिए, ये इसी प्रकार होना था, परमेश्वर की बुद्धि, क्योंकि तब ये बचाने वाले का, पिता का, चंगाकर्ता का गुण दर्शाता है। आपने मुझे इस पर प्रचार करते सुना है। अब यदि ये नहीं किया गया था, वो उन्हें स्वतंत्र आचरण शक्ति पर चले जाने देता कि वे व्यवहार करें। वो उन्हें ये करने के लिए नहीं बना सकता था, और फिर भी धर्मी बना रहता, परंतु वो उन्हें अपने बराबर बनाए रखता और स्वतंत्र आचरण क्रिया, और फिर उन्हें ये अपने आप करने देता, और उसे मालूम था कि वे ये करेंगे। और इसलिए तब आप देखिए, तब जब आदम उसके संग रहा, उसने जुड़वाओं को जन्म दिया, और उनमें से एक शैतान का था, और उनमें से एक आदम का था, जो कि परमेश्वर का था, केन और हाबिल। और ये घटित हुआ, यहाँ ट्यूसान में एक मुकदमा है। श्वेत महिला एक प्रातः अपने पति के संग रही, और फिर दोपहर के बाद एक निगरो के साथ रही, और एक छोटे लड़कों में से, और छोटे लड़के पैदा हुए थे, और उनमें से एक गच्छेसर वाला लड़का था, निगरो, और दूसरा वाला एक हल्के बालों वाला बच्चा, वास्तव में सुंदर। और मैं सोचता हूँ वह श्वेत पिता से ये प्रयत्न कर रही थी कि वे दोनों बालकों का पालन पोषण करे, और उसने कहा मैं अपने वाले की देखरेख करूंगा, परंतु उसकी नहीं, निगरो अपने वाले की देखरेख करे। इसलिए आप देखते हैं कि ये सत्य है, वहाँ सदा से वे जुड़वे रहे हैं, और यही कारण है। और छोटे झुंड, इसे ना भूलना, अंत के दिनों में कलीसिया जुड़वा होने जा रही है, इतनी समीप कि चुने हुओं को धोखा दे दे, मती 24:24। कलीसिया होने जा रही है, ये पेंतिकोस्तल की कार्रवाई है, ये बहुत कुछ वास्तविक के समान है, जब तक कि चुने हुओं को न भरमा दे, यदि ये संभव है। और थोड़ी देर के बाद, यदि मुझे मौका मिला, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चुनाव कैसे आता है। ये उन्हें धोखा देने जा रहा है, क्योंकि ये लगभग वैसा ही है। देखिए, दो पिता, बस एक ही माँ, एक ही कलीसिया, एक ही चलना, वही चीज, वही उपजाऊ भूमि जहाँ वचन गिरता है, परंतु उनमें से एक जैसे यहाँ प्रदूषित है। आप समझे तो कहें आमीन, यदि आपने ये किया। देखिए, उनमें से एक मिलावटी है, क्योंकि ये गलत पिता है, जो कि मैं किसी दिन सिद्ध करूंगा, यदि परमेश्वर ने मुझे से करने दिया, वो नामधारी पशु की छाप है। देखिए, ये गलत पिता है, ये लोगों को एक संगठन के लिए मथ रहा है बजाय वचन के। देखिए, ये गलत पिता है, ये केन की कार्यवाही है। इस बार जब मैं घर जाता हूँ, मैं एक विषय पर प्रचार कर रहा हूँ, सर्प के पद चिन्ह, वो पशु आरंभ में और वो पशु अंत में, उसके पद चिन्ह बाइबल से है, दर्शाए कि वे कैसे आगे बढ़ा। समझे, आप सब इसे टेलीफोन पर ले पाएंगे, अब देखिए, यदि प्रभु ने हमें ये करने की अनुमति दी। और अब देखिए कि ये कितना चतुर है, कैसे वो बिल्कुल ठीक, भाई वे बिल्कुल यहूदा और यीशु की तरह है, अपने गोत्र में दोनों भाई, जैसे एसाव और याकूब, जैसे कौवा और पंडुकी के समान एक ही डाल पर बैठे हैं, और हर चीज जुड़वा है इस महान संग्राम में जिसमें हम हैं। शत्रु धोखे का प्रयोग करता है, जैसे उसने हवा के साथ किया। ओह, परमेश्वर ने कहा, निश्चय ही, परंतु निश्चय ही, समझे। देखिए, उसी बात पर विवाद करता है जो परमेश्वर ने मूल में कहा, तू मर जाएगा। उसने कहा, हाँ, परमेश्वर ने कहा है कि, परंतु निश्चय ही। देखिए, उसने इस पर छिड़क दिया, समझे? परंतु परमेश्वर क्या कहता है, वो बना रहता है, उसे शैतान की किसी सहायता की आवश्यकता नहीं, वो इसे बनाए रखता है, इसलिए इसके द्वारा कभी भी धोखा ना खाएं। अब हम ध्यान देते हैं, फिर ये अपने ही प्रकार का लेकर आता है। अब यहाँ उत्पत्ति में हम पाते हैं इस विज्ञान के विष को छिड़कने के बाद, अब विज्ञान एक ज्ञान है और सब जो हम सुनते हैं विज्ञान है, विज्ञान विज्ञान विज्ञान। विद्यालय का सबसे बड़ा विषय विज्ञान है। आज एक अच्छा वाहन, एक अच्छा घर, एक अच्छा मकान, ये वो अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? सारे समय मर रहे हैं। एक वाहन की रचना की हमने, पैदल चलना छोड़ दिया, हम चर्बी में बदल जाएंगे और हम और अधिक मनुष्य नहीं रहेंगे, हम जैली मछली जैसे हो जाएंगे, ये ठीक बात है। और स्त्री, वो कुल मिलाकर ये करती है, कपड़े फेंकती है और फिर बटन दबाती है और ये हो गया। जब आपकी माँ झरने पर पानी लाने जाया करती थी और लकड़ी काटती और कहीं एक डेगची उबालती और कपड़ों को इस प्रकार से रखती, और हम इतने नाजुक हैं, यदि वे ये करेंगे तो ये हमें मार डालेगा, परंतु हम कुछ नहीं कर सकते। ये वो युग है जिसमें हम रह रहे हैं। यहाँ तक कि अब विज्ञान कहता है कि छोटी लड़कियाँ रजनवर्ती में आ रही हैं, युवा लड़कियाँ 20 से 25 वर्ष की बीच की, मैं उनसे पंक्ति में मिला हूँ, और युवा पुरुष अधेड़ उम्र में 20 से 25 वर्षों के बीच के। मेरी माँ, मेरी पत्नी 35 से 40 के लगभग में हुई, मेरी माँ 45 से 50 के बीच में हुई। देखिए कैसे उनका आहास हो रहा है इन अंत के दिनों में, क्यों हम विज्ञान पर बहुत कार्य कर रहे हैं। 150 वर्षों पहले मनुष्य केवल घोड़े या पैदल यात्रा करता था, और अब वो जेट से जाता है, लगभग विचार के द्वारा। विज्ञान ने यह कर दिया है, ये शैतान का है। अब आप कहते हैं ये ठीक बात है भाई ब्रैनम? जी हाँ श्रीमान। आइए अब उत्पत्ति 4 को लेते हैं। और तब केन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। अब ध्यान दें कि उसने सबसे पहली चीज क्या की। आप मुझे बताएं, जब आप सोचते हैं कि हमारे पास काफी है क्योंकि मैं इसे कहीं भी रोक दूंगा, देखिए, केन यहोवा के सम्मुख से निकल गया, वहीं उसने वो गलती की और वहीं पर आप गलती करेंगे और यहीं मैं गलती करूंगा, उसी घड़ी जिसमें हम परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाते हैं। केन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में जो अदन के पूर्व में है उसकी ओर रहने लगा। देखिए ये कितना धार्मिक था, पूर्व की ओर निकल गया, पूर्व की ओर। जब केन अपनी पत्नी के पास गया तब वो गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी, फिर हनोक ने नगर बसाया, देखिए सभ्यता, उसने नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा, और हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद ने दो स्त्रियां ब्याह ली जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी वाली का सिल्ला है, और आदा ने याबाल को जन्म दिया। वो तंबुओं में रहना और जानवरों का पालना, इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ, और उसके भाई का नाम युबाल है, मैं समझता हूँ JUBAL, वो वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ। देखिए संगीत विज्ञान आ रहे हैं। और सिल्ला ने भी तुबलकेन नाम एक पुत्र को जन्म दिया, वो पीतल और लोहे के सब धार वाले, दूसरे शब्दों में ढलाई और साथ मिलाना, और तुबलकेन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे अद्दा और हे सिल्ला मेरी सुनो, हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ, मैंने एक पुरुष को जो मेरे चोट लगाता था अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था घात किया है, जब केन का पलटा 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा, 7 बार या 7 गुना। अब ध्यान दें, जैसे ही वे यहोवा की उपस्थिति से निकल गए, उन्होंने नगर बसाने आरंभ कर दिए, उन्होंने यंत्र बनाने आरंभ कर दिए, वे विज्ञान में शुरू हो गए, पीतल और लोहे के बनाने वाले और संगीत बजाने वाले और आदि आदि, समझे। अब ये कहाँ से आया, कौन चला गया? केन, सर्प वंश का, आप ये समझते हैं? कौन बाहर चला गया? ध्यान दें, वो यहोवा की उपस्थिति से बाहर निकल गया और विज्ञान पर कार्य आरंभ कर दिया। अब देखिए अब भी ये कहाँ कार्य कर रहा है, देखिए, विज्ञान, शिक्षा, नगर, सभ्यता, ये शैतान का है। किसने से आरंभ किया? शैतान ने। आज ये किसका है? शैतान का। परमाणु बम और चीजें जिससे हमें नाश करें, हम इसमें रहते हैं, हमें यहीं रहना है, हम एक जीव हैं, हमें यहाँ रुकना ही है। परंतु परमेश्वर की महान सभ्यता में इसमें तो कुछ भी ना होगा, समझे। और विज्ञान ले रहा है, प्राकृतिक चीजों को ले रहा है और दूषित कर रहा है इन चीजों को करके जो ये नहीं करनी चाहिए थी। और ऐसे ही वैज्ञानिक धर्म है, ये परमेश्वर के वचन को लेता है और उसमें एक संगठित कलीसिया बनाता है, बजाय इसके कि उन चीजों को करे जो करनी चाहिए। वे कहते हैं आश्चर्य कर्मों के दिन चले गए, बाइबल ने कहा वो कल आज और सर्वदा एक सा है। दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है। समस्त संसार में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से प्रेत आत्मा को निकाल देंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, यदि वे सांपों को उठा लें या नाशक वस्तुएं पी लें इससे उन्हें हानि ना होगी, यदि वे अपने हाथ बीमारों पर रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। क्या तब सारे राष्ट्र, हर कोई, हर प्राणी, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, संसार के अंत, विश्व व्यवस्था, सारी चीज नष्ट के अंत तक वो पूर्णतः वहाँ है। और अब देखिए वे विज्ञान को लेते हैं और कहते हैं ओ भाई देखिए, जब तक हम एक साथ मिलकर कलीसिया के सदस्य बनते हैं और हम ये हो जाते हैं, या एक अच्छे सीधे सदस्य, हम अपना भुगतान करते हैं। देखिए ये नहीं कह रहा है ओ परमेश्वर जैसी कोई चीज नहीं, आपने अंतिम दिनों में झूठे मसीहों पर मेरा टेप सुनिए, देखिए झूठे यीशु नहीं, शैतान इसे अच्छा जानता है, परंतु ये झूठे मसीही, मसीही का अर्थ है अभिषिक्त, और वास्तव में वे अभिषिक्त हैं। अभिषिक्त किस से? पवित्र आत्मा से, चिन्ह और चमत्कार करें, और वे ये करते हैं। परंतु देखिए जब वो ये आता है तो हम अंत के युग में हैं, न कि पीछे के पेंतेकोस्तल युग में, वहाँ हम यहाँ अंत के युग में हैं। और पहला युग वचन के साथ आरंभ हुआ जो कि मसीह था, और अंत के युग का अंत वचन के साथ है जो कि मसीह है। और ये दूसरी चीजें, ये भूसे और आदि आदि, जैसा कि मैंने स्पष्ट किया, ये केवल वचन को लाने वाले थे कि उस उद्देश्य को पूरा करें, जब तक ये पूरे रूप में नहीं आता। देखिए ये मूल बीज किसका था? अब 25वां पद, और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ये कहकर शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति, जिसको केन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया। और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। देखिए कैसे ये सर्प का वंश विज्ञान, शिक्षा, नगरों और संगीत और बड़ी बड़ी चीजों में गया, और शिक्षा और विज्ञान और आदि आदि। परंतु धर्मी का वंश ये कौन था? देखिए हवा का कोई वंश नहीं, आप ये जानते हैं, स्त्री के पास बीज नहीं होता, नारी उसके पास अंडा होता है परंतु बीज नहीं। परंतु उसने उसे ठहरा दिया, एक बीज परमेश्वर की नियुक्ति के द्वारा नियुक्त किया, उसने बीज दिया, और महान वंश निसंदेह स्त्री से है जो परमेश्वर ने दिया था। देखिए परमेश्वर ने उसको एक वंश नियुक्त किया उसके बदले, जिसको केन ने घात किया, कि शत्रु मृत्यु सर्प का वंश मिलावट में वहाँ पर, आप समझे। परमेश्वर ने स्त्री के द्वारा एक वंश नियुक्त किया जो कि मसीह है, कि मूल वंश को फिर से वापस लाए, आप समझे इसे। और इसलिए आप देखिए व्यभिचार, शिक्षा और बुद्धिमानी, और आज जो हम कहते हैं विज्ञान और धर्म, इसके द्वारा मृत्यु को लेकर आया आदि आदि, ये मृत्यु लाया। परंतु वो उसे एक वंश नियुक्त किया, और फिर मनुष्य ने यहोवा के नाम को पुकारना आरंभ किया और फिर से वचन पर वापस आने लगा, समझे। और स्मरण रखें, इस वंश का पीछा करें, जैसे कि हम कुछ सप्ताहों में इसके पद चिन्हों को देखते हैं, इस सर्प को देखेंगे, आप इसका पीछा करें, ये ठीक वचन में से होता हुआ आया है, इस पर ध्यान दें। ये दो दाखलताएं साथ साथ बढ़ती हैं, जैसे कि आपने मेरा संदेश दाखलता सुना है, ये एक साथ ऊपर आते हैं और एक दूसरे के इतनी समानता में है कि ये लगभग चुनावों को धोखा देगा, यदि संभव हुआ अंत के दिनों में जब ये सिर की ओर आता है। ये गेहूं के समान एक बीज उत्पन्न करेगा, परंतु ये गेहूं नहीं है, ये अब भी भूसी है। अब इनकी सभ्यता, शिक्षा को देखें। मैं सोचता हूँ अभी मेरे पास लगभग 10 वचन हैं। अब देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, परंतु मैं सोचता हूँ इन्हें ना लूं। परंतु इसके द्वारा हम समझते हैं कि शिक्षा, विज्ञान और सभ्यता शैतान का है, ये ठीक बात है, ये परमेश्वर का नहीं है, ये शैतान का है। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको ये नहीं लेना चाहिए, नहीं, निश्चय ही नहीं, और थोड़ी देर में इसके बाद हम सिद्ध करेंगे कि परमेश्वर, जैसे कि आप कपड़े पहन रहे हैं, आप महिलाएं, हम पुरुष, हमें आरंभ में कपड़े नहीं पहनने थे, परंतु देखिए इस युग में जीते हुए जो कि हम हैं, हमें कपड़े पहनने चाहिए, हम ये करने के लिए नियुक्त किया गया है, हमें उन्हें पहनना चाहिए, परंतु आरंभ में हमें नहीं पहनने थे क्योंकि हम पाप को नहीं जानते थे, परंतु अब हमें पहनना चाहिए, अब हमारे पास होना ही है, अब हमें जगह जगह जाकर मिलना आदि करना है वाहनों से और विज्ञान और आदि आदि, परंतु ये परमेश्वर का नहीं है, ये परमेश्वर का नहीं है। शिक्षाएं, परंतु वे परमेश्वर का रूप, शिक्षा, सभ्यता, विज्ञान, उसकी अपनी मूल अवस्था में ये इसके आगे जाता है जो हम कर रहे हैं। अब देखिए, वे किसी निश्चित चीज को लेते हैं और उसमें कुछ निश्चित चीजें मिलाते हैं और ये वो रसायन बनाता है जो नष्ट करेगा। अब उन्हें उसी स्थिति में रहने दें, वे ठीक हैं। उन्हें एक साथ मिलाना ये सब गलत है, समझे? देखिए, ये मृत्यु को लाता है। और जब आप परमेश्वर का वचन लेने का प्रयत्न करते हैं और इसे इस संसार के धर्म में मिलाते हैं, तो आप अपने लिए मृत्यु लाते हैं। ये प्रजा को मारता है। देखिए मेरा क्या अर्थ है, ये व्यक्ति को मारता है। आप कहते हैं अच्छा, अब देखिए, आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, अब आपको विश्वास नहीं करना पड़ेगा। यदि आप हमारी कलीसिया, ठीक तभी ये धूमधाम है जो मारता है, ये प्रजा को मारता है। आपको हर चीज को एक और करना है और केवल वचन को लेकर ठीक वचन के संग बने रहें, मत छोड़ें। जब परमेश्वर ने ऐसा कहा, बस यही है। मैं चिंता नहीं करता कि शिक्षा क्या सिद्ध कर सकती है। नूह के दिनों में वे सिद्ध कर सकते थे कि वहाँ आकाश में पानी नहीं है, परंतु परमेश्वर ने कहा वो नीचे आ रहा है और वो बरसा, ये ठीक बात है। वे आज कहते हैं कि वहाँ बरसने के लिए कोई आग नहीं है, परंतु ध्यान दें, एक दिन ये गिरेगी। ओ, हम कैसे वो करने जा रहे हैं? ध्यान दें, परमेश्वर ये करता है और वो करेगा, उसने कहा वो ये करेगा, और ये वंश कहीं अपनी जड़ पकड़ेगा। उपजाऊ भूमि है कहीं जो इसे लेगी, ये किसी में आरंभ होगा और वे इसे दूषित करेंगे और इसे छिड़केंगे जैसे उसने हवा से किया। ये हवा से आरंभ हुआ क्योंकि उसमें बैठ गया और परमेश्वर के पुत्रों को जन्माया, न कि शैतान के पुत्र, परंतु वो उपजाऊ भूमि थी और ये गलत स्थान में गिरा। ऐसे ही वचन अविश्वासी या संदेह करने वाले या संशयवादी पर गिरता है, ये उसमें से कलीसिया के सदस्य बनाता है, परंतु परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कभी नहीं। आप उन्हें बताएं कि वे अपने बल पे बढ़ने दें, वे आपके मुंह पर हंसेंगे। आप उनसे ये वो करने को कहें या पुरुष आपसे ये करें, वे आपके मुंह पर हंसेंगे। ये परमेश्वर के पुत्र नहीं है, ये गलत उपजाऊ भूमि है, तो भी वे बीज को थामे हैं। देखिए, झूठे अभिषिक्त, वे अभिषिक्त हैं, जी हाँ, पवित्र आत्मा से, भाषाओं में बोलते हैं और चिन्हों को दिखाते हैं और आश्चर्य कर्म, परंतु ये शैतान का है। यीशु ने कहा, उस दिन मेरे पास बहुत से आकर कहेंगे, प्रभु प्रभु, क्या मैंने प्रेत आत्माएं नहीं निकाली और बड़े बड़े कार्य किए और आपके नाम में आश्चर्य कर्म? उसने कहा, अधर्म के काम करने वालों, मुझसे दूर हो। दुष्टता क्या है? दाऊद ने कहा, यदि मैं अपने हृदय में दुष्टता का विचार करूं, परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा। समझे? दुष्टता, अधर्म या कुछ ऐसा जो आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए, आप इसे नहीं करते। आप भली प्रकार से जानते हैं परंतु इसे नहीं करेंगे, ये अधर्म है। देखिए, आप जानते हैं उन्हें परमेश्वर के वचन के साथ बने रहना चाहिए, पर कलीसिया के कारण या किसी और के कारण या किसी चीज के कारण आप परमेश्वर के वचन पर नहीं रहेंगे और जो संगठन कहता है करते हैं। भाई, मैं ये नहीं जानता, हमारी कलीसिया कहती है हमें इस प्रकार से करना चाहिए और मैं विश्वास करता हूँ ये इसी प्रकार है। देखिए, ये ठीक आपके सामने है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये अधर्म है या दुष्टता। अधर्म के करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। पहले कुरिन्थियों 13 में संत पौलुस को देखिए, उसने कहा, यद्यपि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, आप जो चाहते हैं या कोई भी चाहता है पवित्र आत्मा का प्रमाण रखना चाहता है। पौलुस ने कहा, यद्यपि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं जैसा कि यहाँ पर आप सबके बीच में है, मैं कुछ भी नहीं। समझे? जी हाँ, भाषाएं बोल सकते हैं क्योंकि ये शब्द है। एक प्रचारक इस वचन को ले सकता है और आगे बढ़कर प्रचार कर सकता है और ये वचन कह सकता है और ये वचन बढ़ेगा, परंतु एक प्रचार स्वयं में ढोंगी हो सकता है, ये वचन है। समझे? परंतु परमेश्वर का एक सच्चा जीवित प्राणी सारे उद्देश्यों को लेता है, वचन को, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, और आप इसमें कुछ मिला देते हैं तो आपको एक मिलावटी पौधा मिलता है। यदि मैं यहाँ गेहूँ से आरंभ करता हूँ और इसके साथ छोटा धतूरा मिला देता हूँ और उन्हें आपस में मिलाकर उत्पन्न करता हूँ, यदि ये परागण के द्वारा किया जा सकता है और इसमें डाल दें, तो मुझे धतूरा गेहूँ मिलेगा। समझे? ये गेहूँ जैसा लगेगा परंतु फिर भी ये एक धतूरा है, ये वास्तविक जीवन नहीं, ये स्वयं को फिर नहीं जन्मा सकता। समझे? ये आएगा परंतु ये स्वयं को उत्पन्न नहीं कर सकता। एक गधा घोड़ी के साथ जन्मा सकता है और खच्चर उत्पन्न करेगी, परंतु वो खच्चर को नहीं जन्मा सकता। ये मिलावटी है, हर वचन अपने ही प्रकार को उत्पन्न करेगा। देखिए, ये एक बार जन्मा सकता है और एक कलीसिया एक संस्था के समान आ सकती है एक बार, परंतु ये फिर से स्वयं को नहीं जन्मा सकती, ये दूसरी संस्था लेकर आएगी। लूथरन लूथरन को नहीं जन्मा सकते, ये मेथोडिस्ट को लेकर आएगा और मेथोडिस्ट पेंटिकॉस्टल को लेकर आएगा। देखिए, ये फिर नहीं जन्मा सकती क्योंकि ये मर गई, ये बेदारी आरंभ नहीं कर सकती। परमेश्वर ने कहा किस संस्था में कभी बेदारी आरंभ की? अपने इतिहास में देखो, उसने कभी नहीं किया। ये संस्था बेदारी के बाद उभर कर आई। जब लूथर परमेश्वर का जन पवित्रीकरण के संदेश के साथ आया, उसके बाद लूथर कलीसिया आई, वे कभी नहीं बना सके। तब परमेश्वर ने जॉन वेस्ली नाम का एक मनुष्य भेजा और उसके पीछे एक बेदारी आई। वे क्या करेंगे? इसे संस्थागत किया, स्वयं को फिर से कभी नहीं उत्पन्न कर सके। ये बांझ है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन सदा जीवित रहेगा, ये ठीक बात है। ये अपने ही प्रकार का लेकर आएगा। अब यहाँ पेंटिकॉस्टल आए, वो नहीं कर सकता। देखिए, इसने क्या किया? संस्थागत हो गया, ये फिर से स्वयं को उत्पन्न नहीं कर सकता। उनके पास ओरल रॉबर्ट और आदि आदि हो सकता है सारे राष्ट्र में, वो ये नहीं कर सकता। ये फिर से वापस पुराने जन्मे खच्चर पर रुक जाएगा, ये नहीं कर सकता। कोई मतलब नहीं इसको कितने इंजेक्शन लगे, वो रुक गया। इसके कितने भी आत्मिक मामले हों या जो भी हों, और आप व्यस्क हैं, आप जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कोई मतलब नहीं कितने पति और पत्नियां उसके हैं या जो भी है, और कितनी भी शाखाएं वे इसे बनाते हैं, छोटी कलीसियाएं और संस्थाएं, ये बेदारी उत्पन्न नहीं कर सकते। ये समाप्त हो गया, ये वचन को पार करके संसार में चले गए, ये स्वयं को फिर से नहीं जन्मा सकते। परमेश्वर कुछ और उठाएगा और अपने वचन को आगे बढ़ाना आरम्भ करेगा, और यदि ये संस्थागत होता है तो ये भी मर जाएगा। ये ठीक बात है, ये स्वयं को नहीं उत्पन्न कर सकता क्योंकि ये मिलावटी है। ये ठीक बात है। आज अपने मिलावटी अनाज को देखें, जो कि सबसे अच्छा बीज है। ये एक मारने वाला है, यही जो आपको मार रहा है। आपके जीवन इसके लिए नहीं बने, आपके शरीर इसके लिए नहीं बने, आपके शरीर मूल बीज के लिए बने थे। यही कारण है कि आपके पिता और माताएं और आदि आदि लंबे जीवित रहे, यही कारण है कि वे मजबूत थे। मनुष्य 70 और 80 वर्ष के कठोर और मजबूत थे। देखिए, वे प्राकृतिक चीजों पर जीवित रहे। वहाँ उन पहाड़ी लोगों को देखें, जो हिरनों और वास्तविक अनाजों पर जीवित रहे। एक व्यक्ति को यहाँ इस नगर में रखें, यहाँ ये बड़ा ढीला ढाला लगभग 35-40 वर्ष का पिलपिला। अच्छा, मैं अपने विषय से हट गया क्या? नहीं, परंतु ध्यान दें, मैं आपको इस सभ्यता पर लाना चाह रहा हूँ जिसे कि हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति, इसके विषय में आपने बहुत कुछ सुना है। क्या आपने कभी मेरा आकलन संस्कृति के लिए सुना था? ये एक व्यक्ति जिसके पास इतना बल नहीं कि एक खरगोश को मार ले, यदि कोई और मार दे तो भरपेट खा सकता है। इसलिए यही जो मैं सोचता हूँ संस्कृति के लिए, ये ठीक बात है। देखिए, हमारे पास नहीं, परमेश्वर इसके द्वारा नहीं, परमेश्वर में ये मनुष्य की सभ्यता नहीं। आप उसे परमेश्वर में सभ्य नहीं करते। वो एक परमेश्वर का बीज, वो जन्मा है परमेश्वर से, सदा से परमेश्वर था और कभी कुछ नहीं हो सकता सिवाय परमेश्वर के। आपकी उसमें खेती नहीं की गई। अब कैसे उसका अपना अदन का प्रकार हुआ और बीज को दूषित करने के द्वारा, यहाँ तक कि अब शैतान ने अपना महान अदन बना लिया। ये क्या है? संस्कृति, विज्ञान, सुंदर कलीसियाएं, ऊंची चोटियां, अच्छे मंझे हुए प्रचारक, शिक्षित, DA, D, PhD, LLD, साहित्य के डॉक्टरेट, डॉक्टर दिव्यता में डॉक्टर। हर बार आप इसका उच्चारण करते हैं, ये उसे परमेश्वर से उतना ही दूर ले जाता है, उसे और दूर फेंक देता है। और भक्त मंडलियां नहीं चाहती कि कोई वहां पर खड़ा हो और आघात आहात शब्द का प्रयोग करे। अपने पास रखें और साथ लाएं, सामने लाएं। वे ये नहीं चाहते, वे कुछ सुंदर सा कुछ चाहते हैं। यही चीज केन के मस्तिष्क में थी। उसके पिता ने आरंभ में देश के फूल और फल भेंट चढ़ाए, जबकि परमेश्वर बलिदान चाहता था। एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रकाशन के साथ, ये लहू था ना कि नाशपाती या आलू बुखारा या ये जो भी था या आड़ू जैसा वे अब कहते हैं, ये लहू था जो कि हमें अदन की वाटिका से बाहर लेकर आया। एक भ्रष्ट लहू, एक स्त्री जिसने गलत व्यक्ति का बीज गर्भ में उगाने के लिए ग्रहण किया और इसे आरंभ किया। अब हम पाते हैं समय पर संदेश प्रमाणित हुआ, जिस विषय में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसे प्रमाणित करूँ। आज मिलावट के दिनों पर हम ध्यान दें, सुंदर जाति बनाने का यत्न कर रहे हैं। मिलावट को देखिए, पौधों के जीवन में देखिए। यहाँ पिछली गर्मियों में, ये इस गर्मी में था, ये था, मेरे पास एक छोटा जंगली फूल था, वो मुझे कुछ मिनटों पहले दिख रहा था, ये मेरे मस्तिष्क में आया। एक छोटा जंगली फूल यहाँ मेरी क्यारी में था, मुझे उसमें दिन में दो बार पानी देना पड़ता था कि इसे जीवित रखूं। ये एक दोगला था, परंतु ये दूसरे छोटे पीले फूल से निकला था, जिस किसी चीज के साथ मिलाया गया था कि इस फूल को बनाए। और ये छोटा पौधा वहाँ खड़ा था, जबकि आप 10 फुट गहरा खोद सकते हैं और इतनी भी नमी नहीं कि थूकने जितनी। देखिए ये था, देखिए ये धूल में जी रहा था, और जितना सुंदर हो सकता था और इसे पानी नहीं देना था। ये मूल था, ये मिलावटी नहीं था, ये असली फूल था और इसमें कुछ मिलावट थी। पानी देना ही था, पालना था और इसकी देखभाल, समझे, इसको कुछ नहीं, कोई कीड़ा इस पर नहीं आ सकता। इस पर छिड़काव करना था और सब कुछ की उसे जीवित रखें और मक्खियां और कीड़ों से बचाए रखें। यदि आप नहीं करते तो ये इसे मार डालेंगे, कीड़े इसके पास नहीं आएंगे, आपको नहीं करना है। ओ ये वास्तविक सच्चा नया जन्म प्राप्त मसीही, आप जिससे चाहे इसकी परीक्षा कर सकते हैं, वो अब भी मसीही है। उसे चाहे जहाँ पर रखें वो अब भी एक मसीही रहेगी। एक छोटी महिला या हमारे भाइयों में से आपके कुछ लोग, उतने उन लोगों ने मुझसे एक पत्र लिखा, कहा पिता नहीं चाहते कि मैं बेसबॉल के लिए जाऊं या बास्केटबॉल खेलूं। भाई बनम, हम विश्वास करते हैं। उसने कहा, वो 12 वर्ष की थी, बोली, भाई बनम हम विश्वास करते हैं कि आपके पास प्रभु का वचन है जिसमें से अब आप हमें बताएं। कहा मैं इस प्रकार सोचती हूँ कि पिताजी गलत हैं, परंतु कहा आप क्या कहते हैं, मैं विश्वास करने जा रही हूँ। अब ये प्यारी छोटी लड़की देखिए, इसलिए मैंने सोचा अच्छा, मैंने कहा प्रिय देखिए, यदि आप मसीही हैं तो आप कहीं भी मसीही हैं, कोई मतलब नहीं आप कहाँ हैं, आप अब भी मसीही हैं। परंतु मैंने कहा आप देखिए उस बास्केटबॉल के मैदान में पिता किस विषय में सोचते हैं, आप उन बालकों की को शपथ खाते और इस प्रकार से चलते हुए सुनते हैं, मैं अब भी विश्वास करता हूँ कि आप एक मसीही होंगे। आप देखिए पिता जीवन में आपसे बहुत आगे हैं, समझे। अब मैंने कहा अब आप 12 वर्ष की हैं और आपने कहा कि आपकी छोटी बहन 4 की है, वो चाहते हैं कि आप उसके लिए कागज की गुड़िया बनाएं। ओ आगे बढ़े, मेरे पास कागज की गुड़िया काटने का समय नहीं है। देखिए आपके पिता छोटी बहन से आगे हैं। अब यही आज कलीसिया को होना चाहिए, परमेश्वर के वचन में और आगे, न कि मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल, प्रेस्बिटेरियन, परंतु वचन में आगे कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के लिए। जी हाँ, ठीक है, संदेश समय से प्रमाणित हो रहा है, विज्ञान के द्वारा, उसके विज्ञान और खोज के द्वारा। आप देखते हैं उन्होंने हर चीज को दूषित करने का प्रयत्न किया है, भिन्न प्रकार का बीज बनाया, कुछ अलग भिन्न बनाया, इसे और सुंदर बनाया। हमारी बहनों को देखो, थोड़ी देर पहले मैंने टिप्पणी की, वे कितनी सुंदर दिखती हैं इस विषय में। ओ आप उन्हें संसार की प्रतियोगिता में खड़ा कर सकते हैं किसी ग्लोरिया स्वानसन के साथ, या इनमें से किसी उधड़ी हुई चीज जो कि यहाँ कैलिफोर्निया में है, और वे इससे लाखों मील चूक जाएंगे, परंतु उनके नाम लोकप्रियता की पुस्तक में नहीं है, ये जीवन की पुस्तक में है। देखा, एक नम्र और दीन आत्मा परमेश्वर का महान खजाना है, और बाइबल ने कहा हमारी स्त्रियों के लिए स्वयं को दीनता और नम्रता से संवारे, अपने पति के अधीन रहें और प्रेम में, परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मोल है, समझे, ये ठीक बात है। ना कि ये सब यहाँ, यही जो उन्होंने किया, मैक्स फैक्टर ने स्त्रियों को बाहर से सुंदर बना दिया, जो कि शैतान का है, ये सब चीजें शैतान की हैं। क्या आप ये जानते हैं, निश्चय ही ये शैतान का है। अब मुझे स्मरण है कि मेरी पत्नी जब वो सुंदर युवती थी उसने श्रृंगार नहीं किया, नहीं, वो आई और मैंने उसे यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया जब वो घुटने तक के कपड़े पहने थी इस प्रकार से। परंतु अब वो बड़ी हो रही है, उसने कहा मेरे झुर्रियां पड़ रही हैं। मैंने कहा आप जानते हैं जब आपकी आयु बढ़ती है मेरी आंखें धुंधली हो रही हैं, मुझे याद है आप कैसी थी और मुझे याद है, और मैं अपने हृदय में जानता हूँ कि तुम किसी दिन कैसे होने जा रही हो, समझे। देखिए शांत और सुंदर आत्मा जो आपके पास है वहाँ परमेश्वर हमें फिर से मिलाएगा, यही है, तब हम फिर कभी नहीं बदलेंगे। इसलिए परंतु आप देखिए नूह के दिनों में जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी बना लिया। देखिए परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा क्योंकि वे कामुक थीं और इस प्रकार के वस्त्र पहने थीं, उन्होंने उन स्त्रियों की कामना की और वे उनके लिए आगे बढ़े। मैं धन्यवादित हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र उससे आगे देखते हैं कि कैसे वे स्त्रियाँ अपने आप को बनाती हैं, समझे। परंतु ये क्या है, ये सब सुंदर है, ये मिलावटी है, उनमें से कुछ एक को लें और उनके मुंह को धो दें, आप नहीं जान पाएंगे कि आपके पास क्या होगा, ये ठीक बात है। संभव है लड़ने के लिए बहुत ही क्रोध, भनभनाए सी कहावत और गंदा और दूसरे व्यक्ति के संग इधर उधर भागती फिर रही है। मैं चिंता नहीं करता कि मेरी पत्नी क्या है, मैं किसी भी स्त्री में ईमानदारी की सराहना करता हूँ। जब मैं एक छोटा लड़का था मैंने सदा कहा यदि नीगर स्त्री ने ईमानदारी से रहना चाहा, तो मैं उसे उसी प्रकार रहने देने के लिए अपने लहू की अंतिम बूंद तक बहा दूंगा। देखिए जो ठीक है मैं उसका आदर करता हूँ, ये ठीक बात है। मैंने अपने सारे जीवन को ऐसे ही जीने का यत्न किया, उस समय मैं युवा था, अब मैं बूढ़ा हूँ, मैंने अपने विचार जरा भी नहीं बदले। इसी नमूने पर विज्ञान खवा ने किया, उसने ये कलीसियाओं में भी किया कि उसे दूषित किया। वो आज अपनी योजना को चला रहा है अपने मिलावटी वाली कलीसिया के द्वारा। आज हमारे पास उसका आधुनिक अदन है, हम वैज्ञानिक अदन में जी रहे हैं, शैतान का अदन, एक वैज्ञानिक अदन। यदि आप यशाया 14:12 में निकालना चाहें, मैं आपको हवाला दूंगा यदि आप चाहते हैं 12 और 14। शैतान ने अपने में कहा, मैं अपने को ऊंचे पर चढ़ाऊंगा, उससे जो सबसे ऊंचे पर है उसके पास एक राज्य होगा जो ऐसा होगा कि परमेश्वर के पुत्र भी उसकी आराधना करें। और ठीक यही जो उसने किया, उसने ये कलीसिया के धर्म के द्वारा किया, जैसा उसने आरंभ किया उसने ये किया। जैसा कि भविष्यवक्ता पौलुस ने भी देखा, दूसरे थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, कि वो आगे बढ़ा अपने बस इस दिन के महान वैज्ञानिक अदन में, विज्ञान में, शिक्षा और सभ्यता में, और स्वयं को बनाया और अंत में एक्यूमेनिकल यानी कि स्वर्ग सभा में चला गया, जहां सारी कलीसियाओं को उसके सामने झुकना था। और देखिए ये क्या है, ये भ्रम की आत्मा जो लोगों के मध्य में कार्य कर रही है। परमेश्वर के पुत्र जो कि परमेश्वर की समानता में बने हैं, और मनुष्य की पुत्रियां जो कि मनुष्य की समानता में बनी हैं, उन्हें शारीरिक आधीनता में लिया गया, जैसा उसने हवा के साथ किया, और स्वयं को विज्ञान की अपनी कल्पना के द्वारा बना लिया, और शिक्षा और सभ्यता, जब तक कि वो स्वयं को आधुनिक वैज्ञानिक और मृत्यु के अदन में ले आए, जहां परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बोला और उसके पास बिना मृत्यु वाला अदन था, कोई विज्ञान नहीं, कोई शिक्षा नहीं, जैसे कि आज हमारे पास है, या कोई सभ्यता नहीं। अब आप इसे देखते हैं, इसे समझते हैं। अब देखिए उसके पास उसका अपना पहला अदन है, सारी कलीसियाएं उसकी आराधना करती हैं। यही जो उसने दूसरे थिस्सलुनीकियों में यहाँ कहा, उसने कहा वो मनुष्य जो स्वयं को परमेश्वर कहलाता है, परमेश्वर के मंदिर में बैठा है और सब पृथ्वी पर है, झुकेंगे और उसकी आराधना करेंगे, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए पृथ्वी के रचने से पहले। देखिए ये आधुनिक अदन है। अब वो स्वयं में क्या कर रहा है, वो स्वयं को आगे बढ़ा रहा है। रोम उसका अंतिम महान भोज अदन का स्थान। आप देखिए उस दिन वो पोप यहाँ जहाँ आया, क्या आपने ध्यान दिया, वे सब जो 13 उस दिन हुए, उसने 13 शब्द बोले, 13 ने प्रभु भोज लिया, यांकी स्टेडियम में बोला जो कि 13 है, हर चीज 13 थी, और हमारे राष्ट्र का नंबर 13 है, प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय में प्रकट होता है, 13 धारियां, 13 सितारे, 13 रेखाएं, सिक्कों पर 13 नंबर, हर चीज 13 है, और एक स्त्री। यहाँ पोप आता है, अध्यक्ष स्त्री का, झूठा मसीह विरोधी विज्ञानी, झूठी दुल्हन के लिए, जो हमारा संसार है, हमारा यहाँ पूर्वी अमेरिकन यानी पश्चिमी संसार, जिसने विज्ञान में संसार की अगुवाई की, अपनी वैज्ञानिक कलीसिया में उसके पास आया, और अब सारे प्रोटेस्टेंट उसके सामने झुक रहे हैं। उस 13 पर आप इसे देखते हैं, हर चीज 13 में है, हमारा सारा राष्ट्र, हर चीज 13 है, स्त्री का संसार। देखिए हम यहाँ पर हैं, ये हमारे पास है, ये स्त्री के संसार में बदल गया, अदन की वाटिका में, परंतु ये किसी दिन परमेश्वर का संसार होगा। अब ध्यान दें, अब भविष्यद्वक्ताओं ने भी इन बातों के विषय में पहले से बताया, और अब सब फिर से वैसा सा ही आ गया जैसे परमेश्वर पहले पृथ्वी पर मंडराया था। ये एक आत्मिक दुर्व्यवस्था हो गई थी, निश्चय ही ये है। यहाँ ध्यान दें, दूसरा अदन उस पहले के समरूप है कि चुने हुए को लेकर धोखा दे दे। अब ध्यान दें कि अब मैं यहाँ तुलना करने जा रहा हूँ कुछ मिनटों के लिए, अब मैं रुकने वाला हूँ क्योंकि ये 11 बजे हैं, और इसलिए सुनिए, ये दोनों वाटिकाएं कैसे ये अदन का प्रतिरूप करने का यत्न है, जैसे कि शैतान ने आरंभ में किया, उस वास्तविक अदन में हवा से किया। जरा ध्यान दें, अब एक साथ प्रतिरूप है। देखिए हम समझ गए, अब हर कोई स्पष्ट रूप से समझता है, एक वैज्ञानिक वाटिका जिसमें हम रह रहे हैं। अब ये परमेश्वर की वाटिका नहीं थी, परमेश्वर की वाटिका विज्ञान, शिक्षा, सभ्यता के द्वारा नहीं आती, ये वचन के द्वारा आती है। देखिए, ये सारी चीजों को ऐसे बुलाता है जैसे यद्यपि वे नहीं थी। और अदन की वाटिका में ध्यान दें, हम इनकी थोड़ी सी तुलना करें। अब ध्यान दें, वो मनुष्य और उसकी पत्नी अदन की वाटिका में छिप गए, और जोड़ा नंगा था और नहीं जानते थे, क्या ये ठीक बात है? परमेश्वर की वाटिका में जोड़ा नंगा था और ये नहीं जानता था, अब वे फिर से नंगे हैं और ये नहीं जानते। प्रकाशित वाक्य 3, लौदीकिया कलीसियाई युग, क्योंकि तू नंगा, दयनीय, कंगाल, अभागा और अंधा और ये नहीं जानता। अब परमेश्वर के अदन में वे नंगे थे और नहीं जानते थे, और अब शैतान के अदन में विज्ञान और शिक्षा में होने के द्वारा वे फिर से नंगे हैं और ये नहीं जानते, क्या ही बिगाड़ है। आज देखिए, मनुष्य को देखिए, अपनी पत्नी के अंदर के कपड़े पहनने का यत्न कर रहा है और अपने बाल उसके समान बढ़ाना चाहता है और वो अपने बाल उसके समान काट रही है। ओ ओ ओ प्रभु, पुरुष स्त्री के समान, स्त्री पुरुष के समान होने का यत्न कर रही है। एक विकृति बिल्कुल इसी प्रकार से कलीसिया कर रही है, वही चीज लौदीकियन युग। ध्यान दें, कारण कि वे नहीं जानते थे कि वे नंगे थे। आरंभ में वहाँ एक पवित्र आत्मा का पर्दा था, उस नंगे पर वे नहीं जानते थे। पवित्र आत्मा उनकी आंखों पर था, वे भाई बहन को छोड़ और कुछ नहीं देखते थे। नियम, वे नहीं जानते थे कि वे नंगे हैं। पवित्र आत्मा, अब अपवित्रताई का आत्मा, अशुद्धता और कामुकता ने उन पर पर्दा डाल दिया है। शिक्षा, विज्ञान, क्यों? ये वैज्ञानिक है। छोटे कपड़े पहनते हैं, ये ठंडे हैं। इंडियन आपको अधिक अच्छा सिखाते हैं। वे कंबल में लिपटे रहते हैं कि वातानुकूलित हो जाएं। देखिए, उसे उड़ते हैं। देखिए, शिक्षा पूरी रीति से एक समय पर आ गई है जिसे वे सोचते हैं कि संस्कृति और सभ्यता इससे आई है। उन्हें वापस अज्ञानता की ओर ले गई, जिस स्थान पर पहले थे उससे अधिक बुरे। विद्यालय, शिक्षा विद्यालयों को देखें, इन विद्यालयों को देखें। उस रात्रि वे लड़के वहाँ, उन युवा स्त्रियों के द्वारा कितने बालक जन्माए गए होंगे उन युवा स्त्रियों के द्वारा हर वर्ष विश्वविद्यालय में। आप सोचते हैं, आप कहते हैं ये गली का कचरा है, और वे लड़के, वे 21 ज्वेल, वे उन्हें पुकारते हैं लिपस्टिक लगाए हुए और उनके बालों की लटे लपेट कर घुंघराले और नीचे लटके हुए, और वो ये कहते हैं, और गंदी गर्दने, गंदे। आप कहते हैं, भाई ये बस गली की कीचड़ है, ये है, ये विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। उस रात्रि उन्होंने खूब मद्यपान किया, उन्हें नहीं मालूम था कि क्या करना है, और उन्हें चढ़ गई पीना और व्यभिचार और इस प्रकार का सब कुछ। ये उनके लिए काफी ना था। उन्होंने बोतलें फोड़ी, लड़कियों के दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाया और उनके मुंह पर मुक्के मारे। एक लड़की की आंख पर से फट गया, बाहर आ गई, और उनमें से बहुत से जीवन भर के लिए कुरूप हो गए। आप सोचते हैं कि वे उन्हें बाहर आने देंगे? नहीं। उनमें से दो लड़के गली में ऊपर नीचे आ जा रहे थे, और युवा विवाहित स्त्रियां सीढ़ियों पर बैठी थी। उन्होंने स्त्रियों का अपमान किया, सिपाहियों ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया। डीन वहां पर आया, और उस विश्वविद्यालय में हर चीज फल फूल रही है, ये कार्य है जो वहाँ हो रहे हैं। कहा, वे मेरे बालक हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए। उन्होंने छोड़ दिया। आप इसी स्थान में हैं। सभ्यता, शिक्षा मृत्यु की ओर ले जाती है, और गड़बड़ी और नरक। आप ऐसी चीजों को ना सुने। अब ध्यान दें, हवा को बस थोड़ा सा झांकना था देखने के लिए कि संसार कैसा दिखता है। आप जानते हैं कि बहुत सी बार हमें बस ये जरा सा पहनना होता है, या आप जानते हैं कि मेरा क्या अर्थ है, बस थोड़ा सा झांकना होता है कि देखें। अब संत यूहन्ना या पहला यूहन्ना 2:15, परमेश्वर ने कहा, यदि आप संसार से प्रेम करते हैं तो फिर परमेश्वर का प्रेम आप में है ही नहीं। वे चीजें जो बाहर हैं मरी हुई हैं, आपका खतना हो गया है, इससे अलग हो गए हैं। आप संसार की चीजों को नहीं चाहते, इसके लिए आप मरे हुए हैं। वे मरे हुए हैं, आप कोई भी मरी चीज नहीं चाहते, ये सड़ा हुआ है, ये बदबूदार है। कैसे कोई जीवित जो इस प्रकार का गंदा हो चाह सकेगा? आप मसीह में जीवित हैं, वचन आपको जीवित करता है। ओ, जब मैं इस दिन के लिए सोचता हूँ जहाँ हम जी रहे हैं, शिक्षा कहते हैं आप प्रचार मंच पर भी नहीं आ सकते जब तक कि आपके पास डॉक्टर की डिग्री ना पालें, और आदि आदि। इससे मुझे एक बार एक चैपलन की याद आती है जो सेना से निकल कर आया था। उसने कहा, भाई ब्रैनम, ये ठीक पहले विश्व युद्ध के बाद की बात है। कहा, चैपलिन बोला, सार्जेंट यहाँ आओ। और बोला, चैपलिन, क्या तुम मेरे साथ लड़ाई में आगे चलना चाहोगे? वहाँ एर्गोना में, वहाँ ला सेला लेरनाइन में, फ्रांस में, आप जानते हैं। और कहा, मैं वहाँ ऑर्गोन के जंगल की ओर गया, और कहा, और उसने इतने सारे टूटे फूटे हुए टैंकों की गिनती की, और कहा, ये ईस्टर की सुबह थी। कहा, मैं बस वहाँ से निकला, मैं नर्स के साथ वहाँ से निकला, और उन घायल लड़कों को बांट रही थी। वो अमेरिकन गुलाब, आप जानते हैं, एक अमेरिकन जिसे आदत होती है, उन लड़कों ने वो गुलाब लिया और बस रोने और चिल्लाने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि ये घर से आया है। देखिए, ये घर से था। और इसी प्रकार से मैं सोचता हूँ हम वचन के साथ करते हैं। देखिए, ले लीजिए, ओ ये परमेश्वर, ये घर से आया है। देखा, मैंने ये तरंग अपने हृदय में देखी। उसने कहा, मैं बाहर गया और बोला, और कप्तान बाहर गया कि नष्ट किए हुए टैंकों की गिनती करे, और इस प्रकार से आदि आदि। कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, वहाँ छोटी सी चट्टान पर जा, और उसने चारों ओर देखा। कहा, उन्होंने मार्स और क्लोरीन गैस जैसी छोड़ी थी, और सारे पेड़ों की पत्तियां जला दी गई, कोई भी जीवित चीज नहीं बची, और ये ईस्टर था। उसने कहा, क्या ईस्टर है, क्या ईस्टर है, यहाँ तक कि मैदान में घास तक की कुछ भी नहीं है। और बोला, किसी चीज ने मुझे चट्टान की ओर आकर्षित किया। उसने चट्टान को खींचा, और वहाँ उसके नीचे एक छोटा ईस्टर का फूल था, उस चट्टान के नीचे था। उस सारी जहरीली गैस में से होता हुआ और कहा, मैंने सोचा ओ परमेश्वर मुझे युगों की चट्टान के नीचे रख जब तक ये सारा जहर निकल न जाए और मुझे सामने उस देश में खिलने दे। यदि आप चाहें तो हम यहाँ पर रुक सकते हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ बहुत कुछ है, जो भी हो मैं इस पर कभी नहीं आता इन चीजों पर, इसलिए हो सकता है कि मैं फिर से वापस आ सकता हूँ और आपको दूं। ओह, उस दिन ये मुझे प्रचार से मिला, एक विचारशील मनुष्य की छलनी, आप सबने ये पढ़ा है, पवित्र मनुष्य के स्वाद को उत्पन्न करता है। भाइयों सोचिए, आप जो भी करते हैं सोचिए, इसलिए 5:26 उसमें ये कहा है, और हम बात कर चुके हैं उस पहले से ठहराए जाने के वचन के विषय में। देखिए, इससे बहुतों को ठोकर लगती है, ये परमेश्वर का वचन है, वो इसका प्रयोग करता है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ठहराए गए हैं, और ये इसमें हम जब आप पहले से ठहराए हुए हैं, क्यों ये तो होना था क्योंकि ये वही है परमेश्वर, परमेश्वर ने आपको चुना है क्योंकि वो जानता है कि आप आरंभ से क्या करेंगे, और शैतान को अपने ऊपर शिक्षा और आदि का विष छिड़कने ना दें और इस प्रकार की चीजें कि तुम्हें आधुनिक होना है, तुम्हें ये होना है, आपको कुछ नहीं होना है, केवल परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, और यदि आप वचन से जन्मे हैं आप हैं। ध्यान दें, वो छिड़काव यदि आप एक बीज लें और अच्छा बीज और आप उस पर छिड़कें, ये इसे मार डालेगा, और जब वे इसे नामधारी को छिड़कते हैं, ये चीजें आपके ऊपर हैं तो आप ये मूल वचन के प्रभाव को नष्ट कर देगा। यदि वे आपको बताते हैं कि आपको ये करना होगा, क्यों दूसरी लड़कियां ये करती हैं, दूसरे पुरुष ये करते हैं, आप इसका विश्वास न करें, ये परमेश्वर के वचन के प्रभाव को जो आप पर है नष्ट कर देगा, आप ही जानते हैं। हमारा मूल पाठ कहता है, समान ना बनो, छिड़का गया परंतु बदलते जाओ, वो बीज जो आप में है। आज लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, वे इतना भी नहीं विश्वास करते कि कोई परमेश्वर है, क्या आप जानते हैं, वे ऐसा व्यवहार करते हैं। अब मैं उन्हें मूर्ख नहीं कहना चाहता हूँ, परंतु वे ऐसा व्यवहार करते हैं क्योंकि भजन संहिता 14:1 में कहता है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। आपको ऐसे व्यक्ति को मूर्ख नहीं कहना चाहिए, परंतु वे वास्तव में ऐसा व्यवहार करते हैं कि वे हैं, क्योंकि वे नहीं, वे ऐसा व्यवहार करते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं, वो वचन पर ध्यान नहीं दिया। इधर देखिए, उस दिन उन्होंने मुझे एक कमरे में देखने के लिए बुलाया, बिली पॉल, मैं विश्वास करता हूँ, या उनमें से कुछ ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम है उस टेलीविजन पर, हमारे पास टेलीविजन नहीं है, परंतु वो एक था, आप उन्हें चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये ना करूं। और जब हम अंदर गए, मैंने इसे अच्छी बूढ़ी बहन से घर किराए पर लिया था और मैंने उन्हें वो धार्मिक कार्यक्रम देखने दिया, इसलिए उन्होंने बुलाया और कहा कि वहाँ सुसमाचार के गाने चल रहे हैं और आप आवारा लड़कों के झुंड के विषय में बातें करते हैं, वहाँ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो कि किया, वे स्वयं को सुसमाचार के गाने वाला बताते हैं, ये यीशु मसीह के लिए खेद की बात है, देखते हुए कि जिस तरह वे कर रहे थे, स्वयं को हिला रहे थे, और ये रिकफाइड वाले बालों को के ढंग और सब कुछ आप जानते हैं, ये बस ऐसा जान पड़ता है कि हंसी उड़ाई जा रही है। केन एक ऐसा व्यक्ति था, वास्तव में धार्मिक निश्चय ही, परंतु उसमें गलत बीज था, देखिए, इसलिए वो सर्प का वंश लाया, शैतान ने इस बीज पर अदन में फुंकार मारी और यही जो केन को लेकर आया, उसने अपना जहर उस पर डाला। वो केन परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जानता था, वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जानता था, केन ये जानता था, क्यों उसने इसे करने से इनकार किया, तो फिर सर्प वंश होने को सिद्ध किया। जब उसने परमेश्वर की सिद्ध इच्छा देख ली, उसने इसे मना कर दिया, उसने परमेश्वर से प्रमाणित हाबिल का संदेश देख लिया था, वो जान गया था कि ये परमेश्वर की इच्छा थी, समझे, उसने परमेश्वर से प्रमाणित हाबिल का संदेश देख लिया था, और परमेश्वर ने उससे क्या कहा, और वो बस उसने कहा वही कर, अपने भाई के समान आराधना कर और तू अच्छा करेगा। परंतु क्या उसने किया, उसने परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को देखा, परंतु उसने वो ना चाहा, वो उसमें कुछ मिलाना चाहता था। और इन धर्म शास्त्रियों को देखिए, ये बाइबल वे इसे पढ़ते हैं परंतु वे इसे करना नहीं चाहते, समझे, ये सर्प के वंश को दिखाता है, उन्होंने इसे प्रमाणित होते देखा लोगों के सामने सादगी में, परंतु ये ऐसा लगा लोगों को परमेश्वर के वचन के लिए नम्र होना बहुत कठिन है। क्या आप सब नहीं पाते, आप महिलाएं जब लड़कियों से बातें करती हैं कि लंबे बाल रखो, वे कहती हैं आपने अपने बाल लंबे क्यों रखे हैं, समझे, क्यों आप ये नीचे तक लंबे स्कर्ट पहनती हैं, आप उनसे बातें करें, वे एक प्रकार से आपको बढ़ावा देते हैं, क्या ये ठीक नहीं, देखिए वे जानते हैं कि ये ठीक बात है, यदि उनमें से कोई महिला हो, समझे, वे जानते हैं कि ये ठीक बात है, परंतु आप देखते हैं वे इसके लिए स्वयं को नम्र नहीं कर सकते। यही जो है, देखिए केन ने कैसे किया, उसने स्वयं को परमेश्वर के प्रमाणित वचन के प्रति नम्र नहीं किया, वो ये नहीं कर सका, वो यहाँ तक कि पेंटिकोस्टल भी कहते हैं परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया, मैं अपने बाल कटाती हूँ और अन्य भाषा बोलती हूँ, ये दर्शाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। देखिए, बीज कुछ भिन्न ला रहा है। एक बीज नहीं सकता, परमेश्वर का बीज बाल कटी स्त्री को उत्पन्न नहीं कर सकता। ये ऐसे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल ने ऐसा कहा है। देखिए, ये नहीं कर सकता, नहीं श्रीमान। अब ये बहुत ही कठिन प्रतीत होता है कि परमेश्वर के वचन के प्रति नम्र हो। अब उत्पत्ति 4:6-7 में ध्यान दें, यहाँ कुछ वचन पढ़ रहा हूँ। ऐसा ही कर जैसे हाबिल ने किया। उसने कहा, यदि तू देखे कि तेरे भाई ने क्या किया, कहा आगे बढ़, वही कर जो हाबिल ने किया, उसी प्रकार से सेवा कर जो उसने की, और मैं तुझे आशीष दूंगा। यदि तू नहीं करता तो पाप द्वार पर है। अब पाप अविश्वास है, जैसा हाबिल ने किया। यदि तू वैसा नहीं करता, तूने देखा कि मैंने उसे प्रमाणित किया और उसे ठीक किया। अब यदि आप वो नहीं करते तो ये दर्शाता है कि पाप अविश्वास द्वार पर है, समझे। और आज वे देखते हैं परमेश्वर क्या प्रमाणित करता है, वे देखते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है, वे सारी चीजों को होते देखते हैं, वे इस विषय में जानते हैं। परमेश्वर अपने चिन्ह ऊपर आकाश में दिखा रहा है और नीचे पृथ्वी में, और ये सारी चीजें इस प्रकार से हैं, और वे देखते हैं कि क्या घटित हो रहा है, परंतु वे ये नहीं करेंगे। देखिए, शैतान, सर्प का बीज, तेज धर्म विद्यालयों से निकल कर आता है, हर शब्द के लिए शिक्षा पाई हुई है, हर चीज प्रचार मंच पर खड़ी है, बिल्कुल ठीक, और हर शब्द व्याकरण के अनुसार बिल्कुल ठीक, और हर चीज, समझे। निश्चय ही वे स्वयं को नम्र और नीचा नहीं कर सकते। इस तरह के लोग, देखिए, वे ये नहीं कर सकते, वे नहीं करते, वे ये नहीं कर सकते। अब यदि नहीं तो पाप द्वार पर है, अविश्वास रखा है, तो फिर वो जानबूझकर अनाज्ञाकारी है। और अब जब भला करना जानते हैं और नहीं करते तो आपके लिए ये पाप है। यदि आप जानते हैं कि सही क्या है और आप ये नहीं करते हैं, समझे, तब वो जानबूझकर अनाज्ञाकारी है। वचन के प्रमाणित होने के बाद तो उसने अलग होने वाली रेखा पार कर ली, तो फिर वो अदन से बाहर हो गया जब उसने ये पार किया। एक रेखा है जहाँ कुछ दूर तक जाते हैं, और यदि आप कुछ और आगे दूसरी ओर जाते हैं, आप ये जानते हैं क्या, नहीं जानते कि ये एक रेखा है। यदि आप इसका विश्वास नहीं करते, आप इब्रानियों 10:26 पढ़ें, यही वचन है जिसका मैं वहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। देखिए, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। ये नया नियम है, क्या ये ठीक बात है। यदि हम जानबूझकर पाप करें, उस प्रचार के द्वारा जो हमें किया गया, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, आपको पढ़ाया और सिद्ध किया गया, सच्चाई का ज्ञान देखने के बाद आप आगे बढ़ते हैं और अविश्वास करते गए जानबूझकर, तो फिर पाप के लिए कोई बलिदान नहीं, परंतु एक भयानक बाट जोहना, आग की ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगी। क्या यह ठीक है। आप वो रेखा पार कर सकते हैं जैसे कि इसराइल के बालकों ने अपनी यात्रा में किया, उस जंगल में से निकलते हुए इसराइल ने वही किया। मूसा के संदेश सुनने के बाद और ये देखने और प्रमाणित होने के बाद झूठे नबी की सुनी, जिसने कहा, ओ अब देखो बालकों, हम सब एक ही हैं, हमें एक दूसरे से विवाह कर लेना चाहिए और हमें ये करना चाहिए। और मूसा ने उन्हें भिन्न बताया और परमेश्वर को प्रमाणित करते देखा, क्योंकि बालाम मूसा से अधिक आज्ञा चलाने वाला जान पड़ता था। वो बड़े राष्ट्र से आया था जहाँ महान लोग थे और सब एक साथ संगठित थे, मुआब के देश में महान सेनाएं और बड़ी बड़ी चीजें, कि लोग इन दिनों में उनसे डरते होंगे। और यहाँ एक भविष्यद्वक्ता आता है, एक भविष्यद्वक्ता, अभिषिक्त, झूठा अभिषिक्त। देखिए, अभिषिक्त किए हुए के पास आया, देखिए कितना मिलता हुआ है, और लोगों को सिखाया और बहुत से उसके पीछे चले गए। आप ये कभी ना भूलें, उस चीज के पीछे चले गए जो वचन नहीं था, वो प्रमाणित सिद्ध किया हुआ वचन। किसी को भी यहाँ ना आने दें और आपको कुछ भी भिन्न बताएं, ध्यान दें परमेश्वर क्या प्रमाणित और सिद्ध कर रहा है। अब यदि वे लोग पीछे मुड़कर देखें और कहें, मूसा परमेश्वर आकाश में प्रकट हुआ और मनुष्य का बोला हुआ प्रकट हुआ, कुटकियाँ, मक्खियाँ, मेंढक अस्तित्व में ले आया, फोड़े और बीमारियाँ, लाल सागर खोल दिया और हम आए और स्वर्ग से मन्ना खिलाया, ओ ये हमारा भविष्यद्वक्ता है। परंतु यहाँ दूसरा भविष्यद्वक्ता आया, परमेश्वर की महिमा हो कि मैं भी भविष्यद्वक्ता हूँ, कहता है, अब तुम सब, मैं तुमको बताऊंगा, अब तुम समझते हो मैं मूसा से अच्छी व्याकरण प्रयोग करता हूँ और मैं ऐसा और वैसा और आदि आदि। और पहली बात आप जानते हैं कि वे इसके लिए गिर गए और उनमें से हर एक ठीक जंगल में नष्ट हो गए, उनमें से एक भी नहीं जिया, उन्होंने कभी नहीं किया, वे स्वर्ग में नहीं होंगे, उनमें से एक भी नहीं। यीशु ने कहा, उन्होंने हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया। देखिए, पेंतिकॉस्टल, ठीक है, देखिए, वे वास्तव में सारे अनुभव से निकल कर आए, और हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, उसने कहा, और वे सारे मर गए। मृत्यु अनंत अलगाव है, वे फिर कभी फिर से नहीं उठेंगे, यद्यपि वे इन सारे अनुभव से होकर निकले थे, प्रतीकात्मक बोल रहा हूँ, वे अन्य भाषाओं में बोले, आत्मा में नाचे और सब कुछ। परंतु जब बल परीक्षा का समय आया, उस बीच में वचन का, दोनों भविष्यद्वक्ताओं के बीच, उनमें से एक वचन पर था और दूसरा वचन से हटकर था, वे दोनों भविष्यद्वक्ता थे। आप समझते हैं तो कहें आमीन। एक वचन पर था, दूसरा वचन से हटकर था, वे दोनों नबी थे, नबी सिद्ध हुए, परंतु एक वचन के साथ था। देखिए, अंत के दिनों झूठे भविष्य अभिषिक्त, एक भविष्यद्वक्ताओं, दोनों भविष्यद्वक्ता थे, एक वचन पर और एक वचन से प्रमाणित और दूसरा वाला वचन के द्वारा प्रमाणित नहीं हुआ। फिर से केन और हाबिल, देखिए दो, झूठा झूठा और सच्चा, ठीक है, परंतु उनमें से हर एक जंगल में सड़ गए और नष्ट हो गए, उनके प्राण मर गए और चले गए, और वे ठीक कर्तव्य के मार्ग पर थे, कलीसिया में जा रहे थे, और वे बातें जो उनके करने के लिए परमेश्वर ने ठहराई, परंतु झूठा शिक्षक स्वीकार किया, जो कि वचन से प्रमाणित नहीं हुआ कि सही सिद्ध हो। फिर भी वो दिव्य डॉक्टर है और वास्तविक भविष्यद्वक्ता के लिए आप जो भी कहना चाहें, परंतु वचन के द्वारा आत्मिक सिद्ध नहीं हुआ और परमेश्वर के चिन्ह के द्वारा, और वे जंगल में नष्ट हो गए। धर्मी, सम्मान योग्य धर्मी लोग मर गए और कभी भी स्वर्ग में नहीं होंगे। देखिए, हमें कहां पर चलना है, समझे? इसे हाथ से न जाने दें। बिल्कुल ऐसे जैसे उस समय नूह का वचन बीज सीधा तैरने वाले में परिवर्तित हुआ, पृथ्वी से आकाश को, लोगों को ये पागलपन लगा, एक छोटा पंथ जो नूह का था, और उसने उन्हें बताया, कहा यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर ने बोला है और वहाँ वर्षा आ रही है। विज्ञान और शिक्षित उस दिन के धर्मी, कहा इस बूढ़े झोला छाप को देखो, ये बूढ़ा हो रहा है, उसका मस्तिष्क ठिकाने नहीं है। देखिए, परंतु वो ठीक था क्योंकि वो प्रमाणित भविष्यद्वक्ता था, और फिर अंत के समय उसका संदेश सच में प्रमाणित हुआ। वो क्या करेगा? वो पृथ्वी से महिमा में परिवर्तित हुआ, एक वचन की नाव के द्वारा जिसका वो प्रचार कर रहा था, वो बदल गया था। विज्ञान के छिड़काव ने उन बाकियों को न्याय में जाने को सड़ा दिया, वे न्याय के पानी पर सड़ गए, बाढ़ के। इस महान विज्ञान युग में जो शिक्षा का है, लोग आज क्या करने का यत्न कर रहे हैं? अदन की कलीसिया वापस फिर अदन की ओर आ गई, वैज्ञानिक परिस्थितियां बजाय वचन के। क्या आप परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठा रहे हैं? क्या लोग परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाने का यत्न कर रहे हैं, या वे स्वयं को ऊंचा उठाने का यत्न कर रहे हैं? ये जो कि आश्चर्य है। कलीसिया, उसका बिगड़ा हुआ बीज ज्ञान की योजना ही कारण है कि समझ जाती विज्ञान के द्वारा परमेश्वर के वचन की वैज्ञानिकता में अज्ञानता, वैज्ञानिकता में परमेश्वर के वचन की अनदेखी। ये बहुत बड़ा पाप क्या नहीं? परंतु वे हैं, कहिए, ये नहीं हो सकता। ये था जब यीशु आया। उस दिन जब यीशु आया, वे लोग परमेश्वर का वचन जानते थे केवल अक्षरों के द्वारा, क्या नहीं? निश्चय ही। परंतु वे इस बात से अज्ञान थे कि वो कौन था, जब उन्होंने परमेश्वर को पंडुकी के पंखों पर देखा और हुआ, और ये ठीक वही करता है जो उसने कहा था कि वो करेगा, और उसने वो किया जो वचन ने कहा, यदि मैं अपने पिता के कार्यों को ना करूं तो फिर मेरा विश्वास ना करो। परंतु उसने वही किया जो वचन ने कहा था कि वो करेगा, और उन दिनों में वे लोग वैज्ञानिक लोग थे, परंतु वैज्ञानिकता की अज्ञानता कि जानबूझकर पाप करें। कामुकता ने अंधा कर दिया, उन्हें आवश्यकता थी कि उन्हें परमेश्वर का वचन दिखाया जाए उनकी नग्नता दर्शाने के लिए। प्रकाशित वाक्य 3 में कहा, मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि मुझसे आंखों का सुरमा खरीद ले, कि तेरी आंखें खुल जाएं, ताकि तू अपने नंगेपन को देख सके। सुरमा परमेश्वर का वचन है, आंखों की चंगाई, जो कि आपको संसार की स्वाभाविक वस्तुओं से ले आकर और आपको परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उसकी उपस्थिति में परिवर्तित करता है। तब आप देखते हैं, आप कहते हैं, एक बार मैं खोया हुआ था, अब मैं मिल गया हूँ, मैं अंधा था, परंतु अब मैं देखता हूँ। देखिए, ये भिन्न होगा। यही जो आज जिसके लिए कलीसिया को बुलाया गया है, मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि अगर मुझसे अपनी आँखों के लिए सुरमा ले ले, ताकि तू मेरे सुरमे से अभिषिक्त हो जाए और फिर तू देखेगा। पवित्र आत्मा को किसी भी व्यक्ति पर आने दें जिसके अंदर वास्तव में कुछ है। एक चंगाई अंदर से ही आती है, चंगाई आपके अंदर आत्मा में से आए जो आपके अंदर है। यदि ये वास्तविक आत्मा का अभिषेक वास्तविक बीज पर है, ये और कुछ नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के पुत्र या पुत्री होने के लिए। परंतु वास्तविक आत्मा जंगली दाने के ऊपर भी आ सकता है, वर्षा जंगली दाने पर गिर सकती है और इसे जीवित रखेगा, ठीक वैसे ही जैसे ये गेहूं को जीवित रखता है। परंतु उनके फलों से तुम उन्हें जान जाओगे, समझे? और हम परमेश्वर के फल के पेड़ हैं, उसके वचन को धारण करते हैं। यीशु ने कहा, मनुष्य अपने आप से इनकार करे और मेरे पीछे हो ले, अपनी शिक्षा का इनकार करें, ज्ञान का इनकार करें, अपनी डिग्री का इनकार करें, उसकी क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। लोगों ने अपनी मर्यादा के साधारण विचार खो दिए। मैं यहाँ थोड़े से वचन नीचे दे रहा हूँ, इस पर मैं स्वयं को 5 मिनट के लगभग दे रहा हूँ। 10 लोग एक दूसरे के बीच में साधारण मर्यादा खो चुके हैं। ये वैसे नहीं रहे जैसे हुआ करते थे। उम्रदार मनुष्य, भाइयों, और मैं यहाँ जानते हैं, और स्त्रियाँ, लोग वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा किया करते थे। वे अपनी साधारण समझ खो बैठे। दिमागी प्रभाव ये लोगों के आधुनिक वैज्ञानिक दिनों में जिसमें हम जी रहे हैं, लोगों के प्राकृतिक स्वभाव के कारणों से वे किसी का सम्मान नहीं कर सकते, एक स्त्री का, एक बहन के समान, और भाई, ये कुछ गंदा है। जैसे वे और स्त्रियों को अपने इतने अनैतिक वस्त्र पहने होते हैं कि बाहर लोगों के मध्य में जाएं और वे कहते हैं मैं एक अच्छी स्त्री हूँ। भाई, उसने स्वयं अपने लिए बाहर इस प्रकार से पहन रही है, किस लिए? वो अंधी हो गई है। ठीक है, यदि यहाँ कोई बहन छोटी आयु की, यदि आपकी माँ या मेरी माँ बाहर सड़क पर चली जाए और इस प्रकार की स्त्रियों के समान, वे उसे पागल खाने में डाल देंगे। उसके पास इतनी भी बुद्धि नहीं कि जाने अपने कपड़े पहने। ठीक है, यदि ये तब पागलपन था तो ये अब भी पागलपन है, ये अब भी उसी प्रकार की स्त्री है, समझे? परंतु वे अपनी सारी शालीनता खो बैठे, अपनी सारी समझ वे अपना खो चुके हैं, और आधुनिक समझ, संस्कृति और शिक्षा के साथ ये होना स्वस्थता है, ये पाप से भरा है और मृत्यु है। ध्यान दें, वे लोग वैसे नहीं जैसे हुआ करते थे। बहुत पहले कलीसियाई जीवन में जब भविष्यद्वक्ता के पास कुछ कहने को होता था, यहोवा यूं कहता है, और लोग हिल गए। वे ठीक किसके साथ बने रहते, वे बढ़े। परंतु अब मैं उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता, उसे बाहर कर दो, ओ समझे? ओ देखिए, उनके पास अधिक समझ नहीं है। लोग अब परमेश्वर के आत्मा से और अधिक प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर का आत्मा उसका वचन है, और उसका वचन उसके भविष्यद्वक्ता के पास आता है, और वचन को आपको परिवर्तित करना चाहिए, वो जो संसार की चीजें हैं, उससे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों की सूरत में। और वचन केवल इन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा आता है जैसे वे बोले, और इसे वचन के साथ मिलना चाहिए, और ये दर्शाता है कि ये वचन था। तब यदि आप उस वचन को स्वीकार करते हैं, ये आपको बदल देगा, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री, यानी संसार के पुत्र से, संसार की पुत्री से परमेश्वर का पुत्र पुत्री। अपने को यहाँ देखें, कितनों के पास ये अनुभव है? हम में से हर एक को हमारे पास ये अनुभव था, क्योंकि ये बोला गया, इसका विश्वास किया गया, वचन आया और हृदय में डाला गया, और ये वहाँ बढ़ गया, समझे? स्वयं को बदल रहे हैं। उसका पवित्र आत्मा बीज वचन को इसकी समानता में बदलता है। जैसा कि यदि आड़ू का वृक्ष आड़ू उगाता है और एक सेब का वृक्ष सेब, इस प्रकार की चीजें उसका वचन परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों को ले आएगा। यही जो इसको करना है। एक दिन जब संसार अंधकार और उथल पुथल में फिर से पड़ा है, परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडराया, उन पहले से ठहराए हुए बीज पर, एक ठहरा हुआ बीज, पहले से ठहराया हुआ, ये बदल गया था। इसने यशायाह 9:6 को लिया। अब वो भविष्यद्वक्ता वहाँ खड़ा हुआ है, क्या ही मनुष्य है जो राष्ट्रों और लोगों पर मंडराया? उसके दिनों के धर्मी लोगों ने उस पर विश्वास किया, उन सब ने नहीं, उन्होंने कभी नहीं किया। परंतु ये भविष्यद्वक्ता, उन्होंने इस मनुष्य को बातें बोलते देखा, और ये बिल्कुल ठीक था जो उसने कहा, वो सिद्ध था और वो घटित हुआ। और यहाँ इस मनुष्य को अपने लोगों के सामने खड़ा होना है और कहता है एक कुंवारी गर्भवती होगी, ओ तर्कहीन है। परंतु आप देखिए, परमेश्वर ने ये स्वयं नहीं बोला, ये वो अपने भविष्यद्वक्ताओं में से होकर बोलता है। अब इस विषय में बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा था, परंतु ये भविष्यद्वक्ता उठा और बोला एक कुंवारी, यशायाह 9:6 में, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, उसका नाम युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर, सदाकाल का पिता कहलाएगा। अब यदि एक कुंवारी गर्भवती होगी, ये वचन बोला गया जो कि एक जीवांश है, और एक भूमि वहाँ होनी चाहिए कि उसे स्वीकार करे। किसी दिन उसने राष्ट्र में ढूंढा, वहाँ कोई नहीं था, वो राष्ट्र से होकर निकला, वहाँ कोई नहीं, और जल्द ही 800 वर्षों के बाद उस पहले से ठहरे हुए बीज ने तैयार भूमि पाई, वो बढ़ने लगी, जैसा कि परमेश्वर ने आरंभ में किया, उजियाला हो जाए। और हो सकता है 800 वर्षों पश्चात उजियाला आया, एक पेड़ हो जाए, और भी इस प्रकार से आया, हर चीज जो उसने कही। यहाँ पहले से ठहरा हुआ बीज है, इम्मानुएल को लेकर आया आ रहा है, परमेश्वर हमारे साथ, और उसे अन्य जातियाँ खोजेंगी, और वे जिसे हम आज खोजते हैं, यीशु। आप पहले से ठहराए हुए बीज को देखते हैं। शैतान ने इस पर छिड़कने का यत्न किया, जैसे हवा से किया, उसने छिड़कने का यत्न किया, परंतु वो असफल रहा। यहाँ ये उसके विकर्षण के साथ, वो पहले से ठहराया हुआ बीज था, वे उसे अंदर न ले सके कि उसे फरीसी या सदूकी बनाए, वे उसे न बना सके कि उस किसी संगठन से है। वो परमेश्वर का ठहराया हुआ बोला गया वचन था। शैतान अपना अविश्वास उस पर नहीं फेंक सका, उस पर एक विकर्षण था। परमेश्वर हम पर विकर्षण छिड़कर, ये मेरी प्रार्थना है, ये ठीक बात है। तब आत्मा उस पर मंडराया और उसे कैलवरी पर भेजा, क्रूस पर, कि इस दिन में उजियाला लाए और उन सब पहले से ठहराए हुए बीजों पर उजियाला लाए, आज की कलीसिया पर, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों को बदल कर अपनी उपस्थिति में लाए। पहले से ठहराए हुए वचन से ठोकर न खाएं। देखिए, मैंने इसका अध्ययन किया है, मैं आपको 1:5 में दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे आप दिखे थे, जैसे कि आप अपने पिता में थे, जैसा मैंने उस रात्रि कहा था, जैसा कि आरंभ में आप अपने पिता में थे, यदि आप नहीं थे तो आप यहाँ नहीं होते। परंतु आप देखिए, इसे तो उपजाऊ भूमि में जाना ही है ताकि उगा कर लाए, और अब आप उसके पुत्र हैं, आप उसकी पुत्रियां हैं। देखिए, ये एक बीज है। और फिर यदि आप कभी, यदि आप एक मसीही हैं, एक वास्तविक पहले से ठहराया हुआ बीज, आप परमेश्वर में थे, इसके पहले की कुछ था, आप सदा से उसमें हैं। आपके जीवन का जीवांश जो कि परमेश्वर का गुण है, जो कि उसका विचार था। उदाहरण के लिए, ये सुंदर महिला यहाँ पर बैठी है, परमेश्वर ने कहा उस दिन में एक लड़की होगी, उसका नाम अमुक अमुक होगा, वह ऐसी ऐसी होगी, और ये, और यहाँ तक कि इस घड़ी को जानता है, वो बैठेगी और संदेश को सुनेगी और लाल वस्त्रों में होगी। देखिए, ये उसका विचार था। उसका पति जो कोई भी है, और वो जो भी है, और वो इसे मिला देगा, और तुम वहाँ बैठोगी इस नगर में इस दिन। आपके पास कोई विधि नहीं है कि आप इसे असफल कर सके। देखिए, क्योंकि आप बढ़ रहे हैं, और जब तक आप अंदर से बीज हैं, बढ़ रहे हैं, और आपको जो बीज ने कहा उसी को उत्पन्न करना है, आप करेंगे। बिल्कुल ठीक, ये उसका वचन है। वो अपने वचन को बनाए रखता है, वो इसका ध्यान रखता है। आप अपने पिता में जीवांश के समान थे, और आप एक पुत्री के रूप में आए। आप में से प्रत्येक भाई और बहन, आप सामने आए। यदि आप अपने पिता में नहीं थे तो आप यहाँ पर नहीं होते। और यदि आप परमेश्वर में नहीं थे, यदि आप बाइबल के संदेश का विश्वास करते हैं, और दिन के वर्तमान संदेश का इसके प्रमाण का कारण है कि आप यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आप यहाँ बैठने के लिए पहले से ठहराए गए हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं होते। आप हो सकता है सड़क पर आप पिए हुए पड़े हुए होते, आप में से कुछ, और आप में से कुछ किसी दूसरे मनुष्य की स्त्री के संग इधर उधर घूम रहे होते, और आप स्त्रियाँ बाहर विवाहित और किसी दूसरी स्त्री के पति के संग घूम रही होती, या कुछ ऐसा ही। देखिए, परंतु आप यहाँ बैठने के लिए ठहराए गए, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका एक पिता है, वो परमेश्वर है, और आप उसका बीज थे। और जब वो एक स्थान पर आता है और वो आपको पाता है जहाँ, तो फिर आप उसमें थे एक विचार के समान। अब आप एक व्यक्ति हैं जो उसके साथ संगति कर सकता है, समझे? जैसे कि आप आरंभ में अपने पिता में थे, परंतु अब आप पुत्र और पुत्रियां हैं, ताकि आप अपने पिता माता पिता के साथ संगति करें। अब आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं जो अपने पिता के साथ संगति कर सकते हैं, परमेश्वर के। देखिए, ये कितना सुंदर है, क्या आप इसे पसंद नहीं करते? तब आप उसके समान हो जाते हैं। यदि हम उसके पुत्र हैं, तो हम उसके सहज गुण हैं। इसके रूप में आरंभ में थे, और उसमें रखें, यदि आप उसमें आरंभ से थे, और जब यीशु जो कि परमेश्वर है वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच वास किया, तो फिर आप उसमें थे, और अपमान में उसके साथ जो उसने स्वीकारा, आप उसके संग कैलवरी पर गए, उसके अंदर, आप उसके अंदर मर गए, आप उसमें जी उठे, और अब आप मिलकर स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं उसमें, समझे? यदि मैं एक अमेरिकन हूँ, तो मैं इसके बदनामी में खड़ा हूँ, मैं इसकी महिमा में खड़ा हूँ। ये जो भी है, जो भी था, मैं एक अमेरिकन नागरिक हूँ, मैं था, मैं प्लेमाउथ रॉक पर उतरा। जी हाँ श्रीमान, जी हाँ, मैं प्लेमाउथ रॉक पर उतरा, मैंने हस्ताक्षर किए। उस प्रातः मैं उस भवन में था जहाँ उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए, मैंने उसके संग हस्ताक्षर किए, मैं इसकी अर्थव्यवस्था का भाग हूँ। मैंने घोषणा यानी स्वतंत्रता पर हस्ताक्षर किए, ये ठीक बात है। मैं फोर्स घाटी में वाशिंगटन में उसके साथ था जब उसने नदी को पार किया। उस प्रातः मैं वहाँ पर था, मैंने उसके संग प्रार्थना की, मैं था। आप एक अमेरिकन के समान, यदि आप एक अमेरिकन हैं, तो आप थे, क्योंकि हर चीज जो अमेरिका है आप हैं। मैंने गुआम पर झंडा फहराया, ये करने में मैंने सहायता की, मैंने हर किले को ले लिया, मैंने उसकी लज्जा धारण की, एक क्रांतिकारी के समान। ये जो कुछ भी है, मैं हूँ, और जो कुछ भी मसीह था, मैं हूँ, जो वो है, मैं हूँ। वो परमेश्वर, यदि वो धर्मांध समझा गया, तो मुझे भी ऐसा ही होने दें। यदि वो एक था, एक बालजबूब, उसके कार्य उसके आत्मा के, तो मैं भी, वो जो भी था, मैं हूँ, वो जो भी था, आप हैं। हमें उसके अनैतिकता में बनाने वाले होना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता के, या उसकी लोकप्रियता, उसकी महिमा, या उसकी लज्जा, हमें वही होना चाहिए। हमें कलीसिया होना चाहिए, यीशु मसीह की दुल्हन। मैं उसके संग पृथ्वी पर रहा जब वो रहा, मैं उसके संग मरा जब वो मरा, मैं उसके संग जी उठा जब वो जी उठा, मैं संग हो गया और मैं उसके संग बैठा हुआ हूँ अब उन स्वर्ग स्थानों में, क्योंकि मैं उसका भाग हूँ। वो जहाँ भी है वहाँ मैं हूँ, जहाँ मेरा दास है वहाँ मैं भी होऊंगा। अब वो हमारे संग संगति कर सकता है और हम में होकर, और उसका बाकी वचन हमारे साथ, जो कि हम उसके वचन का भाग हैं। हम यदि वो वचन है और हम उसका भाग हैं, तो हम वचन का भाग हैं। मेरे पास एक हाथ है और मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? कोई मतलब नहीं। कोई मूर्ख कितने बहाने बनाए कि कोई विज्ञान कहेगा कि मेरे पास हाथ नहीं है। मेरे पास हाथ है, मैं जानता हूँ कि मेरे पास हाथ है, मैं इसका प्रयोग करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास एक बचाने वाला है, मैं अपने प्राण में उसका अनुभव करता हूँ, मैं उसका भाग हूँ। यही जो वचन कहता है, यही जो मैं हूँ। और यदि मैं इसके एक भाग का इनकार करूँ, ये ऐसा ही होगा कि मैं इनकार करूँ मेरे पास हाथ है, कान है, आँख है, मैं ये नहीं कर सकता और अपनी सही मनोवस्था में मनुष्य बना रहूँ। ना ही मैं परमेश्वर के वचन का इनकार कर सकता हूँ और अपने सही में बना रहूँ, परमेश्वर के सही आत्मा में। मुझे वही लेना है जो नामधारी कहता है या जो परमेश्वर ने इसके विषय में कहा। समझे, आप ये नहीं कर सकते। अब बदल जाना, वो हमें अपने वचन के द्वारा बदल सकता है, जिस पर कि हम टिक सकते हैं, क्योंकि हम इसका एक भाग हैं। अब मेरे स्वाभाविक जन्म के विषय में बहुत सी बातें हैं, मेरे स्वाभाविक जन्म में बहुत सी बातें हैं जिन पर मैं घमंड कर सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास घमंड करने के लिए कुछ नहीं है। मेरी माँ पापी थी आरम्भ से, मेरे पिता पापी थे और वे उस झुंड से आए थे, घात करने वाले, बंदूक से लड़ने वाले, और उनमें से अधिकांश अपने जूते पहने पहने मर गए, यक्कड़ और घुमक्कड़ और सब कुछ उस कैंटकी से। मेरी माँ आधी इंडियन और मेरे पास घमंड करने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपने परिवार वंश पर घमंड नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर की महिमा हो एक चीज है जिस पर मैं घमंड कर सकता हूँ, मेरा दूसरा जन्म जो कि यीशु मसीह से आता है। मेरे पास जो अभिभावक हैं, उस पर घमंड कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरा पिता है, वो मेरा बचाने वाला, वो मेरा छुड़ाने वाला, हर चीज जो उसकी है उस पर घमंड कर सकता हूँ जो उसने मेरे लिए किया, क्योंकि अब मैं उसका पुत्र हो गया हूँ। अब मैं चार्ल्स ब्रैनम का पुत्र नहीं रहा, मैं यीशु मसीह का पुत्र हूँ। ये ठीक बात है। अब मैं अपने जन्म पर घमंड कर सकता हूँ? मैं अपने पहले जन्म पर घमंड नहीं कर सकता, उसमें कुछ नहीं है, मुझे उससे लज्जा आती है। मैं अपने दूसरे जन्म पर लज्जित नहीं हूँ, नहीं नहीं, मैं अपने दूसरे जन्म पर लज्जित नहीं हूँ। उसने ये कैसे किया? वचन के जल से धो देने के द्वारा। ये ठीक बात है। सच्चे पहले से ठहराए हुए विश्वासी वचन के साथ बने रहते हैं और वे इसे दूषित नहीं करेंगे। ये दूषित नहीं हो सकता। ओ परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों, हम क्यों नहीं ये महान संगति जो हमें होनी चाहिए परमेश्वर के सारे पुत्र और पुत्रियों में, ये हमारे पास होना ही चाहिए, परंतु वे इसे नहीं करेंगे। बस यही है, क्योंकि वे सच में पुत्र और पुत्रियां नहीं। देखिए, जैसा मैंने उस रात्रि कहा, मैं करने जा रहा था, ये मैंने यहाँ लिख रखा है, परंतु इसे लेने के लिए मेरे पास समय नहीं, मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ। अब छोड़ता हूँ वो छोटा सा अंदर के अंदर, जहाँ आप आरंभ करते हैं, जो कि आपका प्राण है, तब वहाँ से आता है, आप एक आत्मा हैं, तब आप एक जीवित प्राणी हो जाते हैं। अब जीवित प्राणी के पांच चेतनाएं होती हैं कि संपर्क करें, दूसरे के पांच हैं कि बाहर की देह, देखना, चखना, अनुभव, सूंघना और सुनना। अंदर की देह में प्रेम, विवेक और आदि आदि पांच चेतनाएं, परंतु अंदर के अंदर जो नियंत्रण मीनार यानी टावर है, ये या तो परमेश्वर या शैतान है। और आप इनमें से किसी भी चीज की नकल कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, जैसे 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 एक मसीह, या आप प्रेत आत्मा को निकाल सकते हैं एक मसीह के समान। परंतु भीतर की नियंत्रण मीनार, वो आरंभ, वो वास्तविक मूल परमेश्वर का नहीं है, ये कभी भी परमेश्वर के पास वापस नहीं जाएगा। आप इसे समझते हैं? क्या यहूदा ने शैतान को नहीं निकाला? क्या कैफा ने नहीं किया, वो जिसने उसे दोषी ठहराया और मरने को ठहराया, यहाँ तक की भविष्यवाणी? परंतु वो वचन के साथ टिक नहीं सका। समझे, ठीक बात है। कलीसिया और संसार से बदलकर परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों में। अब इस पर ध्यान दे, मैं बंद कर रहा हूँ। अब कैसे परमेश्वर के पुत्र भटक रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं, उनमें से कुछ इस नामधारी से उस नामधारी में, जैसे भटकने वाले तारे कभी भी स्थिर नहीं। जैसे वसंत में पत्ता पानी पर, लियो और हम देखा करते थे, वहाँ पूर्व में पत्तियाँ नीचे उड़ती हुई आती और हर हवा का छोटा झोंका उन्हें इधर उधर उड़ाता। परमेश्वर चाहता है कि हम स्थिर रहें। यीशु में लंगर डाले हुए जीवन के तूफान में मैं साहसी रहूंगा। यीशु में लंगर डाले हुए मुझे किसी हवा और लहर का भय नहीं। देखिए, ये जो भी है, आप में से बहुतों को याद होगा वो छोटी सी लबादे वाली घंटी, जब आप विद्यालय में थे, लड़के और लड़कियां विद्यालय में। अब्राहम और सारा की देह बदल गई ताकि उस प्रतिज्ञा के वचन की स्थिति में मेल खाए। देखिए वे बूढ़े थे, अब्राहम और सारा ने वो प्रतिज्ञा पाई और जब वो 75 का था और वो 65 की थी, रजोव्रत हो चुका था, वो उसके संग जब वो लड़की थी रह रहा था, उसके रिश्ते की बहन थी। और उस प्रतिज्ञा को बनाए रखने के लिए उन दोनों की देहें बदल गई थीं, उस बूढ़े पुरुष और स्त्री के थे एक युवा पुरुष और स्त्री में, कि उस दिन की प्रतिज्ञा को पाएं। परमेश्वर की महिमा हो, इससे मुझे सुखद अनुभव होता है। मैं चिंता नहीं करता कि मैं क्या था, मैं चिंता नहीं करता कि मैं कैसे यहाँ पर आया। हम आज की प्रतिज्ञा को पाने के लिए रूपांतरित हो सकते हैं जब हम एक साथ एकता और पवित्र आत्मा की मिठास में रह सकते हैं और भाई और बहनों के समान जी सकते हैं। हनोक, उसकी संपूर्ण देह रूपांतरित हो गई परमेश्वर में एक प्रतिरूप के लिए और वो स्वर्ग को उठा लिया गया, यहाँ तक कि बिना मृत्यु को देखे हनोक था। एलिया ने यही किया। यीशु की देह मरे हुओं से बदल गई थी, ठंडी सी पिलपिली, तब तक पीटा गया जब तक कि उसको कुचला कि उसकी पसलियां पीठ में न सट गईं, और उसका हृदय भाले से आर पार छेदा गया, संभवतः इतना चौड़ा उसके हृदय के आर पार, और लहू और पानी आया, यहाँ तक कि उसकी देह से नमी खत्म हो गई और लहू भाले पर बह गया और उसके पैरों से और भूमि पर टपका, और इतना मरा जब तक कि चांद और सितारों ने कहा कि वो मरा था, पृथ्वी ने कहा वो मरा था, तंत्रीय दंडवत किए, चट्टानों ने पृथ्वी में से हिल गए और सब चीजें, हर चीज ने कहा वो मरा था, यहाँ तक कि परमेश्वर ने अपना मुंह छिपा लिया, वो मर गया था। परंतु उसकी देह बदल गई थी, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं उसको प्राण अधोलोक में नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं अपने पवित्र को शरण दूंगा। इसे करने की कोई विधि नहीं थी। इन्हीं दिनों में हमारी देह बॉक्स में लिटाई जा सकती हैं, हम आ सकें, आप आ सकें और मुझे बॉक्स में लेटे हुए देखें, मैं आपको देख सकता हूँ, आपके लिए अंतिम शब्द कह सकता हूँ या कुछ इसी तरह से, परंतु आप हमें कभी भी कब्र में नहीं रख पाएंगे। वे आपके ऊपर पत्थर रख सकते हैं, वे आपको समुद्र में दफन कर सकते हैं, वे जो भी चाहे कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर की रूपांतरण वाली शक्ति। दूसरे थिस्सलुनीकियों में कहा, भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम अज्ञान रहो उनके विषय में जो सोते हैं, क्योंकि हम तुमसे भी कहते हैं प्रभु की आज्ञाओं के द्वारा कि परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे, हम जो जीवित और बचे रहेंगे जैसा कि इस प्रातः गाने ने कहा उसके साथ ऊपर उठा लिए जाएंगे कि प्रभु से हवा में मिले। परमेश्वर की रूपांतरण वाली शक्ति हमसे विज्ञान और शिक्षा की दुर्व्यवस्था में ले ली गई और संसार की बातों में और इस आधुनिक दिन की समझ में अब हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों में बदलती है, यहाँ तक कि मृत्यु स्वयं हमें पकड़कर नहीं कब्र में रख सकती। हम क्षण भर में बदल जाएंगे पलक झपकते ही। ओ, आपके कहने का अर्थ, मेरे कहने का अर्थ है कि ये सत्य है। यीशु वो वचन पृथ्वी पर खड़ा हुआ जो कि वचन था और वही जो जी उठा और लाजर को जिलाया, उसने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, वो मुझ पर जो विश्वास करता है यद्यपि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा, और जो कोई जीता है और मुझ में विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। कोई विधि नहीं कि परमेश्वर के जीवते वचन को रोके, इसे फिर से जी उठना है। और इस आधुनिक विज्ञान के अदन के उपद्रव में जिसमें हम जी रहे हैं, संस्कृति का और विज्ञान और शिक्षा के ये सारे आधुनिक चीजें हम उठेंगे, ये मास्क का पहनावा हम उतार देंगे और हम अनंत उपहार को पकड़ लेंगे। किसी दिन हम हवा में से होकर निकल जाएंगे और ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमारे पास हमारे मस्तिष्क के आधुनिक विचार से आया, हमारे मस्तिष्क को परमेश्वर की ओर, हमारे हृदय को नया कर रहा है और हमारे आत्माओं को। वही आत्मा जिसने ये कहा उसने हमें यहाँ तक बदल दिया और ये हमें परमेश्वर की उपस्थिति में भी ले आएगा, उसकी महिमा में, महिमामय देह के साथ। वे घर बनाएंगे, वे उनमें रहेंगे, वे दाख की बारी लगाएंगे। हमारी सारी वैज्ञानिक खोज में हम एक बाग लगाते हैं, हमारे पुत्र आते हैं और उससे फल लेते हैं, और उसके पुत्र आते हैं और उससे लेते हैं, वे लगाते और दूसरे खाते हैं, वे बनाते और दूसरे रहते हैं, परंतु मेरे दासों के दिन इतने लंबे होंगे कि वहाँ वे अपने बालकों के साथ होंगे, वे बनाएंगे और दूसरे उसमें ना रहेंगे, वे बोएंगे और उसमें से दूसरा कोई नहीं खाएगा। क्या वही परमेश्वर, वही भविष्यद्वक्ता जो कि परमेश्वर के वचन ने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, हमसे ये प्रतिज्ञा की। हम इसे कैसे पाते हैं? संभावित रीति से, संभावित रीति में हम वही हैं। देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा ही कहा, ये होना ही है। जब उसने वहाँ लाजर को जिलाया, कहा मत सोचो कि ये विचित्र है, क्योंकि वो घड़ी आती है कि वे सब जो कब्रों में हैं मनुष्य के पुत्र का शब्द सुनेंगे और बाहर आएंगे, कुछ लज्जित होने को और कुछ जीवन के लिए। ये क्या है? बदलना, बदलना परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बना रहा है और आने वाले संसार में हमें जीवन भी दे रहा है। ओ, मैं और क्या कह सकता हूँ, दूसरी बातों को ना सुने, संसार की व्यर्थ वस्तुओं का लालच ना करें जो जल्दी ही नष्ट होती हैं। अनंत बातों पर अपनी आशा रखें, वे कभी समाप्त ना होंगी। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम लें। आइए हम इसे गाएं। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम लें। अब ये है, अपनी आशा अनंत बातों पर रखें, परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को पकड़ें। जब हमारी यात्रा पूरी हो जाए, यदि हम परमेश्वर के प्रति सच्चे रहें, तो महिमा में हमारा घर चमकदार और पवित्र, हमारी उठाया हुआ प्राण इसे देखेगा। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम लें और रूपांतरित हो जाएं। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम लें, अपनी आशा अनंत बातों पर रखें। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को पकड़ लें। विज्ञान पर ध्यान ना दें कि ये क्या सिद्ध कर सकता है यदि ये वचन के विरोध में है, समझे? कलीसिया पर ध्यान ना दें, वो क्या कहती है यदि ये वचन के विरोध में है, क्योंकि हम परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थामे हुए हैं। समय बदलते हैं, विज्ञान बदलता है, उस हाथ को पकड़ ले जो नहीं बदल सकता। अपनी आशा अनंत बातों पर रखें, परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को पकड़ रखें। पिता परमेश्वर, जैसा कि हम आपकी उपस्थिति में हम सब आज प्रातः जमा हैं, एक लंबा विस्तृत संदेश ग्रहण कर रहे हैं, और ओ प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इन लोगों के हृदय में बीज को डालेंगे। प्रभु, स्मरण रखें, हम प्रार्थना करते हैं कि हम निर्बल हैं, हमारी बनावट निर्बल है, और हम कभी कभी हम नहीं जानते कि हम कहाँ जाएं। प्रिय परमेश्वर, आप हमें मोड़ें और हमारी अगुवाई करें, तेरे महान पवित्र आत्मा के द्वारा करें। प्रभु, हमारी सहायता करें, हमें कभी भी अकेले ना छोड़ें। पिता, आपने प्रतिज्ञा दी है कि आप नहीं छोड़ेंगे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही तुझे त्यागूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई लियो और जीन की अगुवाई करें। प्रभु, उन्हें इस प्रकार का अगुवा बनाएं कि आप इन लोगों पर ठहराएं, वे अपने विचार ना प्रयोग करें, परंतु वो महान पवित्र आत्मा उनका निर्देशन करे कि क्या करना है। इन पुरुषों स्त्रियों को आशीषित करें, इन बालकों को, जैसे प्रभु मुझे और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इन्हें लंबा जीवन देंगे। होने दें, यदि संभव हो प्रभु, हम उसके आगमन को देखने पाएं। हम विश्वास करते हैं कि हम, क्योंकि हम हर चीज को बहुत ही समीप देखते हैं, ये बहुत ही समीप है। पिता, इसे प्रदान करें, हम इन्हें आपको समर्पित करते हैं अपने साथ, आपकी सेवा यीशु के नाम में करें, आमीन। मुझे खेद है मैंने आपको अधिक समय तक रोके रखा, भाई लियो।
And purchased.